आज का नर्सरी क्लास है 30/12/1986। पूजी बना दिया ये पुजारी से, ये अभी बताओ बताओ कब बना दिया पुजारी से पूछिए। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, अभी कलयुग के अंत और सतयुग आज के संगम पर प्रयागराज है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम संगम युग पुरुष माने आत्मा और आत्माओं में उत्तम पूज्य 16 कला संभ बारे में कुछ कहा बोला जंजीर में अच्छी फंसी हुई है, बिल्कुल कौन सी जंजीर में? गुरुओं की जंजीर में फंसी हुई है। और यहाँ तो पहले ही बताया जाता है कि हमें तंगी हुई दुनियों को छोड़ो, ये तलह क्लेश कराने वाले गुरु हैं। ये बताया रूहानी तेज धारण करने वाले बच्चों का बाप, और ये रूहानी तेज
रूहानी यात्रा से ही बन सकती है। ये कलयुगी गुरु तो जिस्मानी यात्रा सिखाने वाले हैं, ये रूहानी यात्रा नहीं सिखा सकते। क्यों नहीं सिखा सकते? वो गुरु जो हैं वो सब अपन को जिस्म समझते हैं और दूसरों को भी जो यात्रा कराते हैं वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं। तो वो जिस्मानी यात्रा में जाकर के उनको पूजते हैं, पुजारी बन करके पूजते हैं। तो देखो पूजा करने के लिए ही जाते हैं ना, है? शिव की पूजा करेंगे, पार्वती की पूजा करेंगे, शायद गणेश की भी करते होंगे। वहां मंदिर में जाकर और यहाँ ये पूज्यते पूज्य जो सबका पूज्य है, सबका माने देवात्माओं का भी पूज्य है, मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों का भी पूज्य है, और जो मन बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते ऐसे जानवर जैसे राक्षसों का भी पूज्य है। भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, कौन है? है जिसे राक्षस भी मानते हैं, देवताएं भी मानते हैं। ये है, ये माने कौन, किसकी तरफ इशारा किया? नारायण को भी तो बनाने वाला कोई है, नरसिंह नारायण। तो ये है कह करके किसकी तरफ इशारा किया? ये है पूज्यते पूज्य। साकार में निराकार 1966 में है पूज्यते पूज्य। पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ करने वाला है, नरते नारायण बनने का या पूज्यते पूज्य है? पुरुषार्थी है तो कोई पुरुषार्थ कराने वाला है, जो ब्रह्म वाक्य वेदवाणी मुरली में बोला हुआ भी है। शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो कौन सा शिव बाबा? संपूर्ण स्टेज की बात बताई, वर्तमान पुरुषार्थी की बात नहीं बताई। और इशारा किया शिवलिंग की ओर, जो पूज्य है और वही आत्मा फिर पुजारी भी बनती है। पहला पहला पूज्य और फिर पहला पहला पुजारी। कौन है पहला पहला पुजारी? है द्वापर के आदि में पहला पहला पुजारी कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य पहला पहला पूजी तो नहीं है, क्योंकि विक्रमादित्य तो विकारी राजा है, और विकारी राजा है जानते हैं कि हम विकारी हैं। तो जिन ब्राह्मणों को निर्विकारी समझते हैं उनको मंत्री महामंत्री के रूप में रखते हैं या गुरु के रूप में रखते हैं। तो उनके लिए कौन पूज्य हुआ? हैं, तो वो है सबका पूज्य। और पूजिते पूज्य, इसलिए दिखलाते हैं ना। क्या दिखलाते हैं? हैं? अरे मंदिरों में यादगार दिखलाते हैं ना, हैं? हाँ, सोमनाथ के मंदिर में सबसे पहले दिखाते हैं असली सत्य के यादगार। अभी लिंग सबके आगे है, अभी मने जैसा ब्रॉड ड्रामा में रिहर्सल बोर्ड ब्रॉड ड्रामा में पार्ट बजता है, वैसा ही रिहर्सल भी होती है संग में। कब रिहर्सल होती है? अभी अभी माने कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में लिंग सबके आगे है, उससे आगे कोई भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उनमें लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली हैं। इससे साबित होता है जिनकी पूजा होती है उनमें वो शिवलिंग ही पूज्य है और पूज्यते पूज्य है। बाकी सब पुजारी। रामचंद्र के आगे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कहाँ? अरे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ना, रामचंद्र के आगे दिखाते हैं पूज्य को, हैं? रामेश्वरम में रामचंद्र के आगे क्या नाम लिया? सिर्फ रामन ही नाम लिया, क्योंकि बोला है ब्रह्म वाक्य में बोला है राम पुत्रेता का चंद्रवंशी राम नहीं, जिसके आगे रामचंद्र लगाते हैं। वो नहीं, फिर कौन सा राम? वो राम जिसका शास्त्रों में काम के आधार पर नाम है। क्या काम देखने में आता है? रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम, योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, खेल खेलते हैं, आनंद मनाते हैं, वो राम। बाकी त्रेता युगी 14 कला संपूर्ण राम की बात नहीं, संगम युग में जो राम है, जो पूजिते पूजी बनता है, वो 16 कला संपूर्ण बनकर रह जाता है क्या? इसके लिए तो शास्त्रों में गाते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कलाओं से भी परे है, कलाओं से अतीत है, कलाओं में कैसे बंधेगा? क्योंकि भक्ति मार्ग में गाते भी है, रघुवंश शिरोमणि, रघु सूर्य को कहा जाता है, तो सूर्यवंश में शिरोमणि का पार्ट बजाने वाला तो सूर्य ही होगा। गीता में भी लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं, उससे पहले तो कोई ज्ञान उठा ही नहीं पाता। क्या उससे पहले कोई ज्ञान नहीं उठा पाता? संपूर्ण ज्ञान जो अकूट ज्ञान का भंडार ही आकर देता है। अकूट ज्ञान का भंडारी जिस गीता माता के मुख से देता है, सूक्ष्म रूप में देता है या विस्तार रूप में भी देता है, वो गीता माता भी ज्ञान का अकूट भंडारी नहीं है? क्यों? माता है ना, माताओं में ज्यादा ज्ञान का भंडार होता है या माता के पति में ज्ञान का भंडार होता है? गीता पति भगवान कहा जाता है, गीता का भी पति रक्षक भगवान कहा जाता है। वो गीता पति भगवान कौन? गीता पति भगवान पूज्यते पूज्य है, बाकी त्रेता वाला रामचंद्र नहीं, वो ज्ञान सूर्य है प्रैक्टिकल में। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ही ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य कभी रोशनी से रहित तो होता है? होता है नहीं होता? और चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। तो जिस राम की बात वेदवाणी में कही गई, वो राम प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य है। क्यों? सूर्य से मिसाल क्यों दिया? क्योंकि सूरज चांद सितारे वो तो आसमान के जड़ सितारे हैं, सूर्य से सब प्रकाशित हैं, सूर्य को कोई प्रकाश नहीं देता, वो सूर्य सबको प्रकाश देने वाला है और सदा ही प्रकाश रहता है, या कभी प्रकाशहीन होता है। कहते हैं संपूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण हो गया, दुनिया में अंधेरा हो गया थोड़े समय के लिए, क्योंकि सूर्य दिखाई ही नहीं देता। तो जिनको दिखाई नहीं देता है वो वास्तव में अज्ञान के अंधे हैं या सोच रहे हैं। अरे सूर्य को तो कभी ग्रहण लग ही नहीं सकता, तो असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो पृथ्वीवासी हैं उनके आगे चंद्रमा आ जाता है और वो चंद्रमा के पीछे थोड़े समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता। किनको? पृथ्वीवासियों को। पृथ्वी के जिस हिस्से में चंद्रमा की छाया पड़ती है उस छाया में रहने वालों को सूर्य दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा बीच में आ गया ना। अब यहां ज्ञान चंद्रमा कौन है? कहते हैं ना सुंदर हैं दो जग में नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। भक्ति मार्ग में भी कृष्ण को 16 कला संपूर्ण दिखाई दिया, और वो कीर्तन में भी गाते हैं भक्त, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। माना जो कृष्ण है वो ही नारायण है, परंतु जो गाते हैं वो ये नहीं जानते कि वो कृष्ण द्वापर में हुआ, जहां द्वापर में 8 कलाएं शास्त्रों में लिखी हैं, या सतयुग के आदि में हुआ, क्योंकि शास्त्रों में तो सतयुग में 16 कलाएं लिखी हैं। तो कहा जा सकता है हे कृष्ण नारायण वासुदेव, सतयुग के आदि में कोई नारायण हुआ है 16 कला संपूर्ण? तो भक्तों ने अंधश्रद्धा में आकर के या तो द्वापर में समझ लिया कृष्ण को, और या तो सतयुग में समझ लिया आदि में कृष्ण को, क्योंकि भक्त विचारों को पता ही नहीं है कि सृष्टि रूपी रंगमंच का डायरेक्टर कौन है, जो सदैव पर्दे के पीछे रहता है, किसी को इन आंखों से दिखाई देता है नहीं देता? कौन? जैसे आत्माएं निराकार हैं, दिखाई नहीं देती, तो बिंदु बिंदु ज्योति बिंदु आत्माएं जिनकी यादगार में ब्रकुटी में बिंदु लगाई जाती है, टीका लगाते हैं, उन निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार शिव है, जिसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। वो जन्मण के चक्र में आता ही नहीं। जब जन्म मरण के चक्र में नहीं आता तो देह के बंधन में, इंद्रियों के बंधन में भी नहीं आता। तो देह तो उसको है ही नहीं जो देह का नाम पड़े। तो और सभी आत्माओं की देह का नाम पड़ता है, और जो जन्म मरण के चक्र में कभी आता ही नहीं, आत्माओं का बाप, उसके देह का नाम कैसे पड़ेगा? तो किसका नाम पड़ता है? आत्मा का नाम पड़ता है। इसलिए ब्रह्म वाक्य है, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, वो ओरिजिनल नाम है, वो कभी नहीं बदलता। बाकी जब मैं षष्ठी साकार पर आता हूँ तो नाम बदलते हैं। साकार षष्ठी में, साकार तन में आता हूँ तो जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे नाम पड़ते गए। तो देखो भक्ति मार्ग में जिस रामचंद्र के आगे शिव रखा है, शिवलिंग रखा है, यादगार मंदिर रामेश्वरम में, तो बताओ शिवलिंग और राम दोनों के बीच में कौन पूज्य है, कौन पुजारी है? है रामचंद्र खड़ा हुआ है पूजा करते हुए, और शिवलिंग, शिवलिंग क्या है? पुजारी है, है? क्या है? अरे राम उसकी पूजा कर रहा है ना, तो पूज्य है कि पुजारी है? है पूज्य है। तो रामचंद्र के आगे, ब्रह्मा के आगे, विष्णु के आगे, सबके आगे, वो पुजारियों के भी आगे, उस पूज्यते पूज्य को रखते हैं। किसको? जो गीता में ज्ञान सूर्य बताया गया, इससे साबित होता है कि भक्तों ने जिस कृष्ण को भगवान समझ लिया है, वो कृष्ण उन भक्तों ने शूटिंग पीरियड का ज्ञान न होने के कारण, रिहर्सल के समय का ज्ञान न होने के कारण, सतयुग के नारायण या द्वापर में जो गलती से लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण आया, वो है तो शूटिंग पीरियड की बात, परंतु असलियत में जिस कृष्ण को उन्होंने भगवान मान लिया, वो भगवान तो उन्होंने सतयुग का कृष्ण या नारायण समझ रखा है, क्योंकि पांचवें युग शूटिंग पीरियड पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को ज्ञान है ही नहीं। तो सभी के आगे एक ही पूज्य से पूज्य है, तो सबको सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला, क्या सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला? अरे संगम युग में ज्ञान की रोशनी देने का निमित्त बनता होगा, क्योंकि सुप्रीम सोल जगत जन्म मरण के चक्र से न्यारा त्रिकालदर्शी उसमें प्रवेश करता है, ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में रोशनी देता है क्या? देता है? चार युगों में नहीं देता? वाह, मुरली में तो जो ब्रह्म वाक्य के रूप में बोली गई है, वेद वाक्य है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, और सदा कायम तो एक ही शिव बाबा है। तो सदा कायम शिव बाबा है या अज्ञानी है? ज्ञान की रोशनी से रहित है या ज्ञान से भरपूर है दुनिया वालों के सामने हर युग में? क्योंकि ड्रामा है ना ये दुनिया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों का सीन है ना। तो जो ड्रामा में कोई हीरो पार्टधारी तो होता ही है। हीरो पार्टधारी हर जन्म में हर एक्टर के मुकाबले हीरो पार्टी ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? है, हीरो पार्टी ही बजाता है। तो देखो वो पार्ट चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे हिंसक युद्ध के क्षेत्र में हो, चाहे दुनिया में जो जन्म जन्मांतर राजाएं हुए, उन राजाओं के बीच में कोई राजा के रूप में पार्ट हो, उन सब राजाओं के मुकाबले ऊंचे से ऊंचा पार्ट ही बजाएगा या नीचा पार्ट बजाएगा? ऊंचा पार्ट ही बजाता है। इसलिए वो पूज्यते पूज्य है। जैसे स्थूल सूर्य सदैव स्थूल रोशनी देता है, ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सूर्य सदा ज्ञान की रोशनी देने वाला है। इस रंगमंच पर कोई पहचाने या न पहचाने, तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूज्य है। क्या पूजने योग्य है? सच्चा होता है या पूजने योग्य झूठा होता है? सच्चा ही पूजने योग्य होता है। सिख लोग आज भी कहते हैं ऐसी भी सत होती भी सत, मतलब वो आज भी इस दुनिया में सत्य है, जानते नहीं बेचारे कहाँ सत्य है, होगा भी सत्य भविष्य में भी और पास्ट में भी, सदैव सत्य का पार्ट बजाने वाला है, इसलिए वो पूज्य है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड ही सच्चा है, ट्रुथ इज गॉड। गॉड किसे कहें? सत्य को गॉड कहें, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो गीता में भी लिखा है क्या, इस दुनिया में कभी भी सत्य का विनाश नहीं होता। तो कौन है वो सत्य इस दुनिया में? जो शास्त्रों में भी गाया हुआ है। नहीं, नारायण तो नर से नारायण बनता है। नारायण को भी कोई बनाने वाला है या स्वयं बनता है? बनाने वाला है। तो जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव सत्य का पाठ बजाने वाला है, वो सत्य है और शास्त्रों में भी गाया हुआ है कि एक ही है जिसे कालों का काल महाकाल कहा जाता है, जिसको काल भी खा नहीं सकता, वो सबको खा जाता है, लेकिन उसका विनाश करने के लिए कोई योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। और गीता में भी ये बात लिखी हुई, क्या उसका विनाश करने में कोई दुनिया में समर्थ नहीं है? तो वो शास्त्रों में कौन सा स्वरूप है जो कभी मरता नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं देखा जाता? शंकर को दिखाते हैं, परंतु शास्त्र तो लिखे हैं मनुष्यों ने कि भगवान ने, मनुष्यों की विकारी बुद्धि वो ये जानते ही नहीं कि शंकर जिसका नाम है वो तो संकरण पाठ का नाम है, जिसमें कई आत्माएं प्रवेश करके पाठ बजाती हैं, उसका नाम शंकर रख दिया। तो मिक्स को सच्चा कहें, कहें मिक्स को सच्चा कहें, मिक्सरिटी को सच्चा कहेंगे है? दूध में पानी मिला दो तो दूध सच्चा दूध है? नहीं, वो तो जल्दी फट जाएगा। तो शंकर तो पुरुषार्थी है, जो चित्र देखे जाते हैं चरित्र की यादगार, वो ज्यादातर चित्र किस अवस्था के देखे जाते हैं? याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो याद का पुरुषार्थी है क्या? योग का पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कहेंगे अब इसको योग लगाने की दरकार नहीं है। अब ये जिससे योग लगाता था उसके समान बन गया। अगर समान बन जाए तो योग लगाने की दरकार है नहीं? तो भक्तों को तो, उन विकारी मनुष्यों को तो जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्हें पता ही नहीं है कि शंकर की आत्मा अलग और सदाशिव की आत्मा अलग। इसलिए उन्होंने शंकर को ही ऊंचते ऊंचे समझ लिया। और ये बात ठीक भी है कि ऊंचते ऊंचे और नीचते नीचे इस दुनिया की बात है या सत्ताधाम की बात है, आत्मलोक की बात है? आत्मा है तो सब बिंदु 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 आत्मलोक में। ऊंच नीच पार्ट बजाने की बात है ही नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जब आत्माएं आती हैं तो कोई ऊंच और कोई नीच पार्ट बन जाती है। तो बताया कि वो जो ऊंचे ऊंचे ज्ञान सूर्य है, स्थूल सूर्य भी ऊंचे ऊंचे है या नीचे है? ऊंचे ऊंचे है ना। तो वैसे ही सच रूपी रंगमंच पर जो सदैव ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी है, सबका पूज्य है, सिवाय उनके फिर कोई पूज्य बनाई नहीं सकेंगे। क्या कहा? किसके सिवाय? उनके सिवाय। किसने बोला? शिव ने बोला। शिव को इतना रिगार्ड करने की क्या दरकार के बहुवचन में बोल रहे हैं? उनके सिवाय। दादा लेखराज ब्रह्मा की तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बोलते हैं। और यहाँ किसके लिए बोला? उनके लिए जो आने वाला पार्ट है, जो शिव समान बन जाता है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है कि जब शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो उनका विरुद्ध है क्या? मैं आप समान नंबरवार बनाकर जाऊंगा तो जरूर कोई अव्वल नंबर बनता है। जो अव्वल नंबर है, आत्मा बनता है, वो तो बड़ा हो गया। कहते भी है त्रिमूर्ति शिव, शिव की तीन मूर्तियां, ऊंचते ऊंचे तीन मूर्तियों को मानते हैं। फिर कह देते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और फिर तीनों मूर्तियों में बड़ा महादेव। तो शिव का बड़ा बच्चा कौन हुआ है? महादेव। बड़ा बच्चा ही हुआ ना। भगवान तो नहीं हो गया है? महादेव हुआ या महाभगवान महेश्वर हुआ? महादेव हुआ, माने देवताओं में बड़े से बड़ा है। तो लाजमी है मनुष्यों में भी बड़ा है तो राक्षसों में भी बड़ा है। तो ये सिद्ध होता है कि जो इस सस्य रूपी रंगमंच पर देवात्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, मनुष्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, राक्षसी आत्माएं, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जो भी आत्माएं पार्ट बजाने वाली हैं, उनमें सबसे ऊंच पार्ट किसका है? जिसकी पूजा होती है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है। कि मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। कौन? शिव पुजारी बनेगा तो उसको शरीर का जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं है? लेना पड़ेगा। और वो तो शरीर का जन्म लेता ही नहीं, तो पुजारी बनने का तो सवाल ही नहीं। अच्छा, पूजी तो बन सकता है, पूज्य इसलिए नहीं बन सकता कि साकार की पूजा होती है या कोई बिंदी की पूजा करता है, है? छोटी सी बिंदी रख दे
और कोई उसकी पूजा करे, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, तो पता नहीं कहां लुढ़क जाएगी नाली आली में।
तो निराकार की तो पूजा हो नहीं सकती। जो मैं बोलता है वो देव है। अच्छा दूसरी बात, चलो मान लिया महादेव कहता है अपन को, लेकिन उसको किसी से टैली किया जा सकता है? सुप्रीम सोल शिव को किसी से टैली करेंगे? वो तो तुरिया है।
तो देवों में बड़ा महादेव कैसे हो गया?
क्योंकि जिसमें प्रवेश किया ना उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं,
और ब्रह्मा इंटरफियर करके तो जरूर बोलेगा
है? घर में बाप होता है और अम्मा भी होती है, बाप कुछ बोले तो अम्मा क्या इंटरफियर करके नहीं बोल सकती? बोल सकती है ना? हाँ, बच्चा नहीं बोल सकता, बच्चे को परमिशन लेनी चाहिए माँ बाप की। बच्चा तो बच्चा बुद्धि है, थोड़ा भी समझदार होगा तो परमिशन जरूर लेगा। तो जो निराकार है वो क्या है? निराकार शिव जो है, निराकार आत्माओं का बाप है, वो आखिर क्या है? महादेव तो नहीं है, तो है क्या? कुछ है या कि नहीं? क्या है? लेकिन ठीक है,
सदा तो तब कहा जाएगा जब तीनों कालों में सत्य हो।
वो तीनों कालों में, भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में इस सच्चिरूपी रंगमंच पर मौजूद रहता है, रहता है।
तो सदा काल क्यों लगा दिए?
संगम में भाग ले जाते हैं, उसके संगम में चार लोगों का सिद्धि है,
जो सिर्फ शूटिंग में पार्ट बजाए उसे सदा का सदा कहेंगे। कहना चाहिए सदा शूटिंग काल में, अधूरा शब्द क्यों बोलना? सदा का मतलब है भूत, बोलो बोलो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सदा का। तो वो तीनों कालों का ज्ञाता है या नहीं? इसलिए सदा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही सर्वोपरि चीज है संसार में। जो गीता में भी लिखा है, ज्ञान के समान पवित्र दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, और पवित्रता से ही दुनिया के सारे कार्य होते हैं। अगर पवित्रता नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं होगा। चोर डकैतों के भी कार्य कुछ न कुछ उनमें पवित्रता का, पूर्व जन्म का हिसाब किताब है, इसलिए वो सफल होते रहते हैं। जब वो हिसाब किताब खत्म हो जाता है तो पकड़े जाते हैं, खलास हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी शक्ति है? पवित्रता। इसलिए पवित्रता पूजी भी जाती है। क्या? सती, सत्य को धारण करने वाली,
पूजी जाती है या नहीं पूजी जाती है? पूजी जाती है। सत्य को न धारण करे सच्चाई से, क्या नहीं तो झूठी स्त्रियां बहुत होती हैं। तुलसीदास जैसे लिख दिया, साहस अनरत चपलता माया, अनरत माने झूठ। तुलसीदास तो कलयुग में हुए ना, तो कलयुग में उन्होंने जो अनुभव किया सो बताया कि कलयुग में स्त्रियां झूठी हो जाती। तो झूठी क्यों हो जाती है? भोजन की भरी हुई थाली बड़ी पवित्रता से बनाई किसी ने, और कुत्ता आकर के एक मुंह मार करके चला गया, खा के चला गया। मनुष्यों में भी कुत्तपना होता है कि नहीं? होता है ना, वैसे कुत्ते बहुत होते हैं कलयुग में। तो जो सच्ची पवित्र थाली थी उसमें कुत्ते ने मुंह मार दिया और कुछ खा के चला गया, तो उच्छिष्ट हो गया ना, क्या झूठा हो गया ना। झूठा कहेंगे या सच्चा कहेंगे? हैं? झूठा कहेंगे ना। तो ऐसे इसीलिए गीता में कहा है, कोई भी कुल ऊंचे ते ऊंचा क्यों न हो, अगर ऊंचे ते ऊंचे कुलीन व्यक्ति के परिवार की स्त्री वर्ण संकर हो जाती है तो वो कुल का नाश हो जाता है। कुलग्नि कही जाती है, कुल का नाश करने वाली कही जाती है। और आज भी दुनिया में ये मानते हैं, खास भारत में तो मानते ही हैं, घर की स्त्री घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर झूठी है दुराचारिणी है तो घर नरक बन जाएगा। ये काम नरक का है, नरक बनाना देवताओं का नहीं है। नरक द्वापर युग से होते हैं या सतयुग त्रेता में होते हैं? स्वर्ग में द्वापर युग में नरक बनता है, क्योंकि जितने भी धर्म संस्थापक आए धर्म पिताएं आए वो नर रूप थे या देव रूप थे या भगवान का रूप थे? नर रूप थे। वो धर्म पिता ही ऐसे हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी वैसे ही होंगे। तो ये द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं जो द्वापर युग से आते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म। अरे अच्छा खासा सनातन धर्म भारत में चल रहा था, इन विदेशी धर्म पिताओं ने आकर के क्या किया? विधर्मियों ने अपना और एक धर्म ऐड कर दिया, दूसरा आया उसने तीसरा ऐड कर दिया, तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, तो आपस में झगड़ा होगा कि नहीं होगा?
घर घर में झगड़ा होना लाजमी है।
तो देखो ये झगड़े की दुनिया कैसे बनती है,
इसका मूल कारण क्या है? झगड़े की दुनिया बनने का मूल कारण है काम विकार।
जो भी द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं उनमें जो पहला आता है
द्वैतवादी धर्म पिता, वो कौन से धर्म का आता है? इस्लाम धर्म का।
वो इस विकार पने की लाम लगा देता है,
लाम माने लाइन लगा देता है इस दुनिया में,
सबसे जाती संख्या बढ़ाता है।
यही कारण है हिस्ट्री में है कि जब से वो इस्लामी आए, इब्राहिम आया, तब से ही उनके धर्म में ये नूद था, धर्म पिता ने ये नूद कर दिया
कि भाई बहनों की शादी करो। क्या एक बाप से पैदा हुई बहन न मिले तो चाचा की लड़की से भी शादी करो?
मामा की लड़की से भी शादी करो,
माने कैसी भी बहन हो शादी करो, संतति बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ।
तो समाज में जानवरियत आएगी या नहीं आएगी?
जानवर में और मनुष्य में कोई फर्क होता है या नहीं होता है?
जानवर नहीं समझता क्योंकि बुद्धि ही नहीं है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी अम्मा है। जानवर को अकल होती है? होती है? नहीं होती।
ये अंतर है। मनुष्य जानवर से भी बदतर बन गए,
जो वेदवाणी में ही बोल दिया, ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बोल दिया,
बाप बेटी को नहीं छोड़ता,
भाई बहन को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, टीचर शिक्षा को नहीं छोड़ता।
ऐसा प्रदूषण फैलने लगता है।
कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने लगती हैं,
तो क्या होगा? जानवर बनेंगे या देवता बनेंगे?
हैं? जानवर बन जाते हैं।
नाम देते हैं हम मनुष्य हैं, कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन मनुष्यता का,
इंसानियत का खून करने वाले हैं।
इंसानियत को मार डालने वाले हैं।
तो समझ में आया,
इस दुनिया के पतन का मूल कारण क्या हुआ? कि बच्चा जो मां के पेट में पलता है, आज मां को घर से निकाल के बाहर कर देता है।
जिस मां के पास पेट की रोटी का कोई इंतजाम नहीं, जानता है,
फिर भी धक्का मार के निकाल देता है बाहर।
तो ये सब जो कमजोरियां समाज में आ जाती हैं,
उसका मूल कारण क्या हुआ है? काम विकार, काम विकार। हाँ, वेदवाणी है, ब्रह्मवाक्य है, काम महाशत्रु है, गीता में बोला है जयेनम पापमानम, काम महाशत्रु है। तो काम माने क्या? काम माने काम का अर्थ है इच्छा, और इच्छाओं में भी जो भी प्राणी मात्र है इस दुनिया के, इस द्वैतवादी युग में, चलो द्वैतवादी युग की बात छोड़ दो, अद्वैतवादी देवताओं की दुनिया में भी कामना है या नहीं है? है? अगर कामना ही न हो, काम ही न हो, तो सृष्टि बढ़ेगी? हाँ, देवताओं में, देवात्माओं में श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने की कामना होती है, और मनुष्यों में जिन्हें वास्तव में मनुष्य कहा जाए, मनु की औलाद, क्या ब्रह्मा की औलाद जैसे ब्राह्मण, विष्णु की औलाद बा वैष्णव, बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ाई जाती है। तो मनुष्य किसकी संतान है वास्तव में? मनु की संतान। तो मनु जरूर मनन चिंतन मंथन करने वाला होगा, मन का उपयोग करने वाला होगा, और बाप मन का उपयोग करने वाला होगा, तो बच्चा भी मन का उपयोग करने वाला होगा। तो वास्तव में जो मन का उपयोग है, या तो जब सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आता है तब मन का उपयोग कराता है, पत्थर बुद्धि मनुष्यों को जो जानते ही नहीं कि मन क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है। तो पहले बताता है कि तुम मन बुद्धि रूपी आत्मा हो, ज्योति बिंदु। इस ज्योति बिंदु रिकॉर्ड में, इस मन बुद्धि में, इसमें जो शक्ति है मनन चिंतन मंथन करने की, फैसला करने की जो बुद्धि है, परखने की जो शक्ति है, उसका नाम है आत्मा। उसकी दो मुख्य शक्तियां हैं, मन और बुद्धि, जिनमें जन्म जन्मांतर के संस्कार अच्छे बुरे भरे हुए हैं।
तो पहचान देता है कि तुम मन बुद्धि सहित आत्मा हो। नहीं तो इस दुनिया में तो मनुष्य भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, समझते हैं मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं। अरे जब जन्म लिया था तो डॉक्टर थे, मैं इंजीनियर हूं, मैं मिनिस्टर हूं। अरे जन्म लिया था तब मिनिस्टर थे कि नहीं थे, हवा हो गए थे तो तुम असली क्या हो तो कोई नहीं जानता। तो भगवान आकर के बताता है, कैसे बताएगा, उसको तो मुख ही नहीं है, उसको तो इंद्रियां ही नहीं है, तो वो निराकार कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करता है। वो तो त्रिकालदर्शी है, जानता है ना कि सब मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं, उनमें जन्म जन्मांतर सच्चा रह करके पार्ट बजाने वाला कोई है या नहीं है, नहीं जानता। मैं जब इस सचरूपी रंगमंच पर आता हूं, वो जब आता हूं तो जो अकूट सत्य का भंडार, ज्ञान का भंडार देता हूं, उस ज्ञान के भंडार को धारण करने वाले, रिसीव करने वाले बुद्धि से नंबरवार बच्चे होते हैं कि एक जैसे होते हैं, तो उनमें कोई अव्वल नंबर होता होगा या नहीं होता होगा। जो अव्वल नंबर होता है और जब तक वो अव्वल नंबर आत्माओं में अव्वल ज्ञान देने वाला अखूट ज्ञान का भंडार, जब तक अखूट भंडार देता है ज्ञान का, तब तक एक ऐसी आत्मा जरूर है मनुष्य शक्ति के बीच में होती है जो उसके दिए हुए वर्ते का सत्य ज्ञान अखूट भंडार का पूरा उपयोग करती है। तो जब संगम युग में पूरा उपयोग करेगी तो क्या ब्रॉड ड्रामा में चारों युगों में आदि से लेकर के सृष्टि के अंत तक सच्चाई का पूरा उपयोग करेगी या नहीं करेगी? पूरा उपयोग करती है। इसीलिए सृष्टि के आदि में एक गाया हुआ है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परम पद, वो परम पद है विष्णु। क्या विष्णु? नो विष एटा, जिसमें विषय विकार का नाम निशान नहीं होता, एकदम सृष्टि के आदि में, नई सृष्टि के आदि में। ब्रह्म वाक्य है, अभी वर्तमान में उस ब्रह्मा का वाक्य है, भले सूक्ष्म शरीर से ही हो लेकिन ब्रह्म वाक्य है। दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है नई दुनिया की, और तो
13 वर्ष पहले भी बोल दिया था, बाप दादा तुम बच्चों के लिए नई दुनिया की सौगात लेकर आए हुए हैं, उस नई दुनिया में जाना आना करते हो ना, बोला था कि नहीं है क्या?
अभी बोला है,
उस समय भले स्थान नहीं बताया लेकिन फाउंडेशन पड़ रहा है ये तो बता दिया। तो उस समय से ही बता दिया कि जिसे विष्णु कहा जाता है, जिसमें नो विष एट ऑल, कैसा पाठदारी, सर्प सर्पिणियों की शैया के ऊपर पड़ा रहता है, इधर सर्प पड़े हुए हैं, इधर सर्प पड़े हुए हैं, इधर सर्प सर्पिणी पड़े हुए हैं, पीछे सर्प सर्पिणी बैठे, सर के ऊपर भी वो ही सर्प सर्पिणी रक्षा कर रहे, फिर भी वो विषाक्त तो होता है, विषय वासना उसके मन में आती है, आती है, प्रैक्टिकल ज्ञान है। कन्या माताएं तो जो शास्त्र में प्रसिद्ध है, जिन्हें गऊएं कहा जाता है, गोपियां कहा जाता है, उसके लिए बताया है शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान के ज्यादा संसर्ग संपर्क में आती थी, तो वो जाती जानती होंगी ना कि विष्णु पार्टधारी इतनी सर्प सर्पणियों के बीच में पड़ा रहता है, विकारी अंग उनको दिखाई देता है, हा? अगर दिखाई देता होता तो माताओं के पेट में तो बात पचती ही नहीं है, पचती है वो तो चारों तरफ बल 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 कर देंगे, अरे ये विकारी है, हाथ लगाते ही विकार दिखाई पड़ता है, अंग में विकृति आ जाती है, दिखाई पड़ता है, अनुभव में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब तो षष्ठी के आज में माना संगम युग में ही जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है, और फिर उसके बाद जब नई दुनिया की छोटी सी राजधानी भी तैयार होती है, तो वो विष्णु रूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो विष्णु रूप जिसमें विकार का नाम निशान न देखने में आवे, विष्णु माने स्त्री पुरुष का कंबाइंड रूप, तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि ईर्ष्या द्वेष रूपी विषय विकार तीन देवताएं जो त्रिदेव कहे गए हैं उनकी पत्नियों में भी देखने में आता है, आता है कि नहीं आता है,
शास्त्रों में प्रसिद्ध है, दिखाया गया है, लड़ाई लड़ती है। तो और वो तीनों देवियां अपने से भी ऊंच किसी देवी को मान ही लेती हैं, भले कह पहले प्रतिकार करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अपने पतियों से झगड़ा भी करती हैं, मैं नहीं मान सकती, तीनों ही चैलेंज देती हैं। आखिरी उन्होंने को भी झुकना पड़ता है। काम के आधार पर नाम है शास्त्रों में, क्या नाम है, जो ईर्ष्यादेश काम विकार से ही पैदा होता है, वो काम की विकृति एक ही देवी है जिसकी त्रिदेवियों ने भी पूजा की है, क्या नाम है, अनसूया। अन असूया, असूया माने ईर्ष्या देश, नहीं तो स्त्रियों में तो बहुत ही ईर्ष्या देश होती, बहुत सौतिया दाह होता है। अगर किसी पुरुष ने दो शादी तीन शादी कर ली तो मारे सौतिया दाह के झगड़ा ही झगड़ा, झगड़ा ही झगड़ा, ईर्ष्या देश बाहर निकल पड़ता है। तो एक देवी ऐसी दिखाई है जिसके काम के आधार पर नाम पड़ा अनसूया, माना जो भी देवियां हैं उन सब की अम्मा कौन है, जगदम्बा। यहां तक कि जगदम्बा को तो ईर्ष्या आती ही है, किसके ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर। कि मैं सारे जगत को जन्म देने वाली, जगत का पालन करने वाली ये लक्ष्मी पार्टधारी कहां से निकल पड़ेगी मेरे से आगे। और बाकी जो देवियां हैं जैसे पार्वती, वो शंकरी से लड़ाई लड़ा पड़ती है कि मैं तो समझती थी इस दुनिया में मैं ही एकमात्र अव्वल नंबर सती हूं, मेरा तो पूर्व जन्म से नाम ही सती है, सत्य को धारण करने वाली। तो ये कौन सी निकल पड़ी जिसकी आप महिमा करते नहीं थकते। तो वो अनसुईया है, अत्री और अनसुईया। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, माना जो तीन नहीं है, त्रिदेव का पाठ आरंभ ही जब नहीं हुआ। तो जब त्रिदेव नहीं तो त्रिदेवी भी नहीं, एक ही है अत्रि, तीन है ही नहीं। जैसे कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस, हाउस माने कोई शरीर रूपी घर है, एक है या दो चार है, त्रिमूर्ति हाउस एक है ना, नाम रखते हैं त्रिमूर्ति रोड,
एक रोड का नाम है त्रिमूर्ति रोड या तीन का नाम है? एक रोड है, रोड माने रास्ता, कि इस रास्ते पर जाना है। वो रास्ता गलत है, हम जो रास्ता तुमको दिखाते हैं इसी रास्ते पर चलो, मेरी मत पर चलो माने मेरे रास्ते पर चलो। तो त्रिमूर्ति रास्ता कहो, त्रिमूर्ति रोड कहो, त्रिमूर्ति हाउस कहो, वो एक है। जिस एक के यादगार मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं तू ही मेरी माता है और तू ही एक मेरा पिता है।
अरे
माता स्त्री होती है, पिता पुरुष होता है, एक कैसे? वो कौन है जिसे सामने कहते हैं तू एक ही मेरी माता है, एक ही मेरा पिता है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बोलते हैं मंदिर में जाकर अंधश्रद्धा से, जानते नहीं हैं कौन है आखिर जो मंदिर में शिवलिंग के रूप में रखा हुआ है, जो एक है तीन नहीं है। दो का कॉम्बिनेशन भी नहीं है, एक ही व्यक्ति रूप है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सुप्रीम गॉड फादर। परंतु अंग्रेज लोग तो निराकार को कहते हैं या साकार को कहते हैं? निराकार को कहते हैं। अपने भारत में तो भारतीय विद्वान ने माना है, तुलसीदास ने लिखा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है, जो साकार है वही निराकार, माने साकार और निराकार का कॉम्बिनेशन है। हम ब्रह्म वाक्यों को मानने वाले ब्राह्मण यही बात मानते हैं कि वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत क्या है। साकार और निराकार का मेल है जिसे हम कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते हैं? शिव बाबा। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है, धर्म पिताओं ने कभी अपने को ये नहीं कहा कि मैं ग्रैंडफादर हूं। धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स माने जाते हैं उनको, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर किसी ने नहीं कहा, कहीं किसी ने कहा नहीं। तो सवाल ये है कि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? शिव निराकार तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है सिर्फ, उसका कोई दूसरा संबंध है ही नहीं। हाँ, वो जब इस सृष्टि में आके किसी साकार में प्रवेश करता है तो अनेक संबंध बनते हैं, उनमें एक संबंध खास ये भी है ग्रैंडफादर, और सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, माने दुनिया में जो धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, महान धर्म पिताएं कहे जाते हैं, उन ग्रेट फादर्स का भी फादर है। उन ग्रेट धर्म पिताओं ने भी उसको मान्यता तो दी है, लेकिन जानते नहीं है कि वो क्या है। सभी धर्म पिताओं ने माना है कि सृष्टि का आदि पुरुष आदम है, एडम है, आदि देव है, आदिनाथ है, आदि पुरुष को माना सबने, लेकिन जाना नहीं है। वास्तव में वो आदम एडम ही जो हमारी भारतीय परंपरा में आदि देव शंकर कहा जाता है, वो आदि देव ही ग्रैंड फादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। सब धर्म के जो भी फॉलोअर्स हैं उनके अपने अपने फादर्स धर्म पिताएं ग्रेट फादर्स, और उन धर्म पिताओं का भी बाप, बाप उसे कहा जाता है जो वर्षा दे। बाप किसे कहा जाता है, है? बाप अगर प्रॉपर्टी न दे तो बाप खाएगा। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी देता है मन और बुद्धि। क्या देता है? मन बुद्धि की प्रॉपर्टी और तन की प्रॉपर्टी, और तन से ही धन कमाए जाते हैं। वो है हद की दुनिया में, और ये है बेहद का बाप, बेहद के रूहानी बच्चों को बेहद की प्रॉपर्टी देता है। बेहद का वर्षा भी देता है। बेहद की प्रॉपर्टी है ज्ञान धन, और बेहद का वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्ति। तो देने वाला बाप जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से मुक्त स्टेज का अनुभव करने वाला होगा या नहीं होगा? अगर बाप दुख दर्दों का अनुभव करने वाला नहीं है जीवन में रहते, तो बच्चों को कहां से देगा? सुप्रीम सोल बाप, उसको तो जीवन होता ही नहीं। होता है, वो तो पराये शरीर में प्रवेश करता है, और उसको मुक्ति की दरकार है। उसको है, उसको तो दरकार ही नहीं, और जीवन में आता नहीं तो जीवन मुक्ति की भी दरकार नहीं है। जिसमें प्रवेश करता है पहले पहले और उसका नाम रखता है नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, क्योंकि बाप है ना, ऐसा बाप परम पुरुष। क्या पुरुष माने? आत्मा। आत्माओं में परम पुरुष है, तो जो परम पुरुष है दुनिया का कोई भी पुरुष हो, कोई भी प्राणी हो, जीवन में बाप बनने का कार्य कृत्य करेगा या नहीं करेगा? हाँ, शिशु है, बच्चा है, किशोरावस्था है, तो बाप बनने की इच्छा नहीं, लेकिन एक ऐसा समय आता है जीवन में
जिसे कहते हैं नौजवान स्टेज, टीन एज, टन टन आने लगता है दिमाग, वो अपनी प्रॉपर्टी को संभाल नहीं सकता, अपने अंदर जीवन भर धारण करके नहीं रख सकता। कौन? पुरुष, कुमार, नौजवान नहीं धारण कर सकता है, वो एक अवस्था जरूर आती है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो 45 साल का कहा जाता है, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही क्यों न हो, वो भी उस शक्ति को जिसे सत्व कहा जाता है, सार कहा जाता है मनुष्य जीवन का, उसको अपने अंदर धारण करके नहीं रख सकता। क्या चाहिए? धारण करने वाली धारणा शक्ति चाहिए, आधार चाहिए, जिस आधार में, जिस धारणा करने वाली धरणी में वो बीज बो सके सत्व का, जिसे वीर्य कहा जाता है। ये परंपरा किसने चलाई? ये संगम युग में परंपरा शुरू हुई या दुनिया में किसी मनुष्य ने या देवता ने चलाई? किसने चलाई? पहले पहले किसने चलाई? ये परंपरा चलाई कि उस सत्व को जब नहीं धारण किया जा सकता, आखिरी स्टेज आ ही जाती है, तो वो अंदर अंदर ऐसा उतावलापन आता है कि मैं जाऊं ढूंढूं आधार को, धरणी को। वो आशिक हो जाता है धरणी का, क्या बन जाता है? आशिक माशु के पीछे भागता है। खलबली पैदा हो जाती है। ऐसे ही वो है, त्रिकालदर्शिता की शक्ति सत्य, वो सूक्ष्म शक्ति है। क्या? ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडारी, सत्य का भंडारी। सत्य का कि झूठ का भंडारी? सत्य का भंडारी। वो धारण कर ही नहीं सकता, उसके बाद आखिरी स्टेज आ जाती है। 5000 वर्ष पूरा हुआ और वो त्रिकालदर्शी पने की जो भंडार धारण करने की शक्ति है वो पूरी हो गई, और वो माशूक को ढूंढता है और ब्रह्म वाक्य में बोलता है, वेदवाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं बोलता है, मैं भारत का आशिक हूं। किसका आशिक हूं? मैं भारत का आशिक हूं। किसने बोला? सुप्रीम सोल, जिसके अपवित्र होने का कभी सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही बड़े से बड़ा पवित्रता का भंडार है, बड़े से बड़ी दुनिया की शक्ति है। वो बोलता है सर्वशक्तिवान, क्या बोलता है? माशूक चाहिए। माशूक को ढूंढने के लिए ऊंचे से ऊंचे धाम को छोड़कर इस सृष्टि पर आता है और जानता भी है क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मेरा माशूक कौन है, जानता है कि नहीं? त्रिकालदर्शी है ना, तो बोलता है दुनिया की ऊंचे से ऊंची पावर सुप्रीम सोल जिसका आशिक है, उसका आशिक सारी दुनिया को बनना पड़े। क्या कहा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी प्राणी नहीं बचेगा जो उसका आशिक न बने। सब आशिक हैं और वो एक माशूक है। कौन है माशूक? कौन है माशूक? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। काहे में लगा रहने वाला? जब से ज्ञान में आए, जब से पाप को पहचाने, तब से लेकर जीवन भर काहे में लगा रहे? ज्ञान के धंधे में लगा रहे। ब्राह्मणों का धंधा क्या बताया? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो इस धंधे में जो एकदम ट्रेंड हो 100%, क्या इस धंधे में जो 100% ट्रेंड हो ब्राह्मण, उसको दक्ष कहेंगे, प्रजापति। शास्त्रों में नाम जो है काम के आधार पर है कि बिना काम के नाम है? काम के आधार पर नाम। तो वो दक्ष नाम से प्रसिद्ध होने वाला वो सुप्रीम सोल फादर, उसका भी माशूक बनता है। इसलिए सच्चे रूपी रंगमंच पर प्रत्येक प्राणी मात्र का वो माशूक है और आशिक को पहली पहली बार कम से कम जरूर माशूक के सामने झुकना पड़ता है। ये फाउंडेशन पड़ गया क्या कि दुनिया का कोई भी प्राणी मात्र बाप बनने से पहले माशूक को ढूंढता है और उस माशूक का को अपनी पहली रचना बनाता है। रचना माने कृति। वो पहली रचना उसकी प्रकृति हो गई। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो सुप्रीम सोल की अव्वल नंबर की प्रकृति माता, वो ही शख्सियत जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज रूप हीरो पार्टधारी है, वो उसका आधार रूपा माता बनता है। इसलिए गीता में कहा है मम योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं आकर के ज्ञान का बीज डालता हूं। ये ब्राह्मणों की यज्ञ की हिस्ट्री के आज की बात है जो गीता में लिखा है कि मैं जब आता हूं तो पहले पहले जिसको ज्ञान देता हूं वो कौन?
सूर्य।
सूर्य माना
वास्तव में तो सूर्य वो है सुप्रीम सोल जो सदा सूर्य की तरह डिटैच रहने वाला है धरणी से। वो सूर्य धरणी से सदा डिटैच रहता है या अटैच रहता है? डिटैच रहता है। असली तो वो ही है सूर्य, लेकिन वो आशिक हुआ है। तो सब कुछ जो भी आशिक होता है वो अपनी सारी ताकत एड़ी से लेकर चोटी तक की सारी ताकत माशूक में अर्पण करता है। इसलिए वो बड़ी पावरफुल हो जाती है। कौन? परिवार रचने वाले पिता की पहली रचना, वो पहली रति, पहली कृति, पहली रचना है। बाकी जो बाल बच्चे बच्चियां पैदा होंगी वो बाद के। तो पहली रचना के मुकाबले कमजोर होंगे या पावरफुल होंगे? कमजोर ही होते। इसलिए जिसे जगदम्बा नाम दिया जाता है, जगत की अम्बा, भारत की अम्बा नहीं, एक देश की अम्बा नहीं, सारी दुनिया में जितने भी धर्म और धर्म के फॉलोअर्स हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र की अम्बा, जगत अम्बा, वो जगत अम्बा जब जगत पिता को पहचान कर समर्पण होती है, अर्पण में बनती है, तो सबसे पहले वो अर्पण मैं होती है या कोई दूसरी मनुष्य आत्मा होती है? इसका प्रूफ, इसका प्रूफ है ब्रह्म वाक्य। नहीं, 81 की अव्यक्तवाणी में बोला, जब 13 वर्ष हो गए अव्यक्त पार्ट को, गुलजार दादी के द्वारा जो अव्यक्त पार्ट बजा उस ब्रह्मा के पार्ट को 13 साल हो गए, तो इशारा दिया कि 13वां साल है तो 13वीं में 13 होना चाहिए ना। अरे ये क्या बात हुई, 81 में ढेर की ढेर ब्रह्मा कुमारियां अर्पण हो गई थी, हुई थी या नहीं? समर्पण नहीं हुई है? हुई। तो ये क्या बोल दिया? कि 13 साल पूरे हो रहे हैं तो 13 होना चाहिए ना। माना तब तक कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी 13 नहीं हुई, हुई या नहीं हुई? क्यों? पंजाब की ब्रह्मा कुमारियां तो बड़ी लड़की होती है, वो सुनेंगी तो लड़ पड़ेंगी। ये क्या कह दिया कि कोई अर्पण नहीं हुई? अरे अर्पण हुई या नहीं हुई? अरे चुप है, है? पूरे तरह कैसा होता है?
पूरा तरह माना क्या, अधूरा तरह माना क्या? आप जानते होंगे तो बताओ। हैं? अरे बाप की गोद में बच्चा खेल रहा है, माँ की गोद में बच्चा खेल रहा है, बच्चा को कोई दीगर आदमी गोद में लेना चाहे तो नहीं जाएगा, माता पिता की गोद में आराम से चला जाएगा। तो बच्चा अर्पण नहीं हुआ माता पिता के प्रति, हुआ कि नहीं हुआ? हैं? हुआ। तो ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारी, और उनसे ये कोई कहे कि तुम समर्पण नहीं हुए, बाप के बने नहीं, तो उन्हें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? हाँ, अरे अम्मा के बच्चे हुए, अम्मा को पहचाना, क्योंकि जो अम्मा का पार्ट ब्रह्मा नामधारी हुआ उसने भी बाप को नहीं पहचाना। कभी ऐसा होता है? हाँ? ऐसा कभी होता है कि अम्मा बाप को न पहचानती हो कि बच्चे का बाप कौन है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। अरे अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जो भी माँ बीज रूप बाप को बीज धारण करती है वो तो जानती है कि ये बच्चे का बाप है, नहीं जानती? फिर ये क्या चक्कर हो गया कि गोद में आने वाले बच्चों से कोई कहे कि तुमने कागज पर भले सरेंडर किया हो, दुनिया के सामने दिखाने के लिए भले सरेंडर किया हो, लेकिन तुम सुप्रीम सोल बाप के प्रैक्टिकल में बच्चे बने ही नहीं। देहंकार इतना अंधा बना देता है। जो दादा लेखराज ब्रह्मा, जिसका नाम ब्रह्मा रखा सुप्रीम सोल बाप ने, वो देह अहंकार में इतना अंधा था कि सारी दुनिया में चक्कर काटता फिरा, अपने गुरु से पूछा, दूसरे गुरुओं के चक्कर काटे, वाराणसी के सालों चक्कर काटे, और कोई ने जवाब नहीं दिया कि साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। और अचानक उसे कभी याद आ गया कि मैंने जिस व्यक्ति को अपनी दुकान का मैनेजर बनाया है होशियार समझकर, उससे और पूछूं। चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद जहां पहुंचा तो वहां से उसे संतुष्टि मिल गई। साक्षात्कार जितने भी हुए सभी साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन ये सब तो हुआ, लेकिन जो देह अहंकार है, वो देह अहंकार ऐसी चीज है जो आदमी को अंधा बनाए देती है। बुद्धि में बैठा हुआ था ये तो मेरी दुकान का नौकर है। कौन है? नौकर है, और मैं तो मालिक हूँ, इसकी जिंदगी मेरे आधार पर चलती है। नहीं तो इसको तो कोई पूछता नहीं था, एक छोटी सी दुकानिया लेके बैठा था, भले हीरे का व्यापारी था, कोई इसकी दुकान पर फटकता नहीं था। मैंने रहम खा करके इसको अपनी दुकान का मैनेजर बना के रखा। ये देह के अहंकार ने पहचान नहीं दे लेने दी। क्या नहीं पहचाना? अक्सर ऐसे दुनिया में भी होता है। क्या कि कोई बाप तो बन जाता है, लेकिन बाप बनने से पहले पूरा पूरा एहसास नहीं करा पाता कि मैं तेरा पति हूं, और बेहोशी की स्टेज में उसको मां बना के चला जाता है। इस अहंकार को, देह अहंकार को भी क्या कहेंगे? बेहोशी की स्टेज कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? नहीं कहेंगे। बेहोशी की स्टेज में बीज डाल दिया, समझ में नहीं आया। बेहोशी माने कभी कोई स्त्री ऐसी स्टेज में हो कि उसको होश ही नहीं है, तो ये देह अहंकार ऐसी चीज है कि होश आवास गुम, क्योंकि माता के रूप का पार्ट है, पिता के रूप का वो पार्ट है ही नहीं। देह अभिमान माताओं में ज्यादा होता है या पिताओं में ज्यादा होता है? माताओं में ज्यादा देह अभिमान होता है। माताएं धरणी हैं, धरणी माने पृथ्वी, वो तो देह अभिमान की अति है उसमें। जैसे सीता के लिए कहते हैं, सीता ने कहां से जन्म लिया? धरणी से जन्म लिया, मिट्टी से जन्म लिया, और मिट्टी में ही समा गई। देह अभिमान की धरणी से बाहर आ ही नहीं पाती। ये देह अभिमान ही लोकलाज में फंसाए देता है। हाँ, ये लोकलाज क्या होगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बस। तो वो ब्रह्मा का पार्ट पक्का पक्का साकार में माता का पार्ट है, पिता का पार्ट नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य में बीसियों बार बोला है ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वर्षा बाप से मिलता है। इस ब्रह्मा का फोटो लेने से भी कोई फायदा नहीं है, इसका फोटो भी नहीं रखो, नहीं तो ये ब्रह्मा याद आता रहेगा। बाप को याद करना है, बाप को पहचानना। तो ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो इनसे पूछा जाए 20 बार, तुम किसके बच्चे हो, कहेंगे हम माँ के बच्चे हैं। अरे बाप का नाम तो बताओ, झुंझलाए जाते हैं, तुमको क्या मतलब। तो ब्रह्मा ही नहीं जानता बाप कौन है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को कहने वाले मानने वाले जो ब्रह्मा समान बच्चा बुद्धि हैं, जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, तो औरों के पहचानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किनके पहचानने का सवाल नहीं होता? नहीं, उन बच्चों के पहचानने का सवाल नहीं होता जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ही ली है। गोद का बड़ा फकुर है, घड़ी घड़ी बोलते हैं, अरे तुम कल के बच्चे ज्ञान में आए हो, तुम हमको क्या ज्ञान सुनाओगे, तुमने ब्रह्मा की गोद ली है, मम्मा की गोद ली है, अरे हमने मम्मा बाबा की गोद ली है,
जाओ जाओ, हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुने। तो वो बाप के बारे में कुछ बताने के लिए तैयार, भले ब्रह्म वाक्य में बोला भी है, मुरली में बोला है, बच्चे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम नहीं रखना चाहिए, उसमें प्रजापिता शब्द ऐड करो। तुमको अपने नाम से आगे प्रजापिता अक्षर जरूर जोड़ना है। ये मुरली में भी ब्रह्म वाक्य में भी ये वाक्य आया, लेकिन वो तो गोद के ऊपर न्यूछावर है, कुखवंशावली है, कुख गोद को कहा जाता है, मुखवंशावली तो है ही नहीं। मुख से ज्ञान निकलता है या गोद से ज्ञान निकलता है? ज्ञान कहाँ से निकलता है? है? गंगा ज्ञान गंगा गाई जाती है, लेकिन ज्ञान गंगा भी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गौमुख। गंगा फिर भी नाम पड़ता है नीची स्टेज से, गौमुख तो ऊंचे पहाड़ पर है, जहाँ भक्ति मार्ग में गौ का मुख बनाई दिया। वो तो बेचारे भक्त हैं, अंधश्रद्धा के आधार पर भावना है, लेकिन असलियत को नहीं जानते। तो भी उस भावना में भी सच्चाई भरी पड़ी है। तो देखो, ब्रह्मा वाली आत्मा भावना वाली थी या बुद्धिवादी थी? माताएं भावनावादी होती हैं या बुद्धिवादी होती हैं? भावनावादी होती। तो शक्ति की साकार रूप में पार्ट बजाने वाली महती शक्तिवान, सब शक्तियों का मूल सहन शक्ति, उसका प्रैक्टिकल साकार रूप दादा लेखराज ब्रह्मा देखा गया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी या अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने वाला ये तो कह ही नहीं सकता कि ब्रह्मा बाबा ने हमको आंख से भी टेढ़ी नजर से देखा, वाचा से दुर्वचन कहे या कभी बाहुबल चलाया किसी को कहते हुए सुना, किसी ने भी सुना? सुना नहीं? सुना शास्त्रों में भी दिखाते हैं कि दाढ़ी मूछ वाला जो ब्रह्मा है कितना सहनशीलता का पार्ट, असुर कितना आकर के सामने दुष्टता से बात करते हैं तो भी शांति से समझाते, कभी नाराज होते हुए नहीं दिखाया गया। तो माता का पार्ट हुआ या नहीं? दुनिया की जो माताएं हैं वो बच्चों की परिवार की पालना करती हैं, कौन सी शक्ति होती है जो कन्याएं माताएं ही परिवार की पालना कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते, नहीं करते है? सहनशीलता। और दुनिया की जगत की जितनी भी माताएं हैं उनकी माता कौन? जगदम्बा। और जगदम्बा का भी जो तामसी रूप है दुनिया के अंदर, जब दुनिया तामसी बन जाती है तो माँ काली के मस्तक में कौन बैठा हुआ है? वो ही चंद्र जो सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण चंद्र नाम से विख्यात होता है। क्या? कृष्ण चंद्र, 16 कला संपूर्ण कृष्ण चंद्र।
वही आत्मा जो सच रूपी वृक्ष की पहली आत्मा है, पहला पत्ता है, उस पहले पत्ते को इस संसार में भगवान जब आते हैं तो प्रैक्टिकल रूप है सहनशीलता का, माता का पार्ट बजाने वाला। परंतु माता तो है, और भारतीय परंपरा में माता को वर्षा नहीं मिलता रहा, ये तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब से हुआ। महाशिवरात्रि की छुट्टी भी होने लगी और कन्याओं माताओं को वर्षा भी मिलने लगा प्रॉपर्टी में। उससे पहले माताओं को कोई वर्षा नहीं मिलता था। ये परंपरा कहां से चली? ये ब्राह्मणों की दुनिया की परंपरा है। सृष्टि के आज से भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तब ये परंपरा चलती है। भगवान ये परंपरा नहीं डालता क्या कि माता को वर्षा न मिले? क्या भगवान डालता है? ऊंचे ते ऊंचा जो करतार है वो परंपरा डालता है, है? नहीं डालता। फिर कौन डालता है? इस मनुष्य शक्ति का जन्म लेने वाला मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष का पहला पत्ता यही परंपरा डालता है। क्या वहां से ये परंपरा शुरू हो गई कि माता को वर्षा नहीं मिलता? माना दादा लेखराज ब्रह्मा को शरीर रहते रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा बेहद के बाप से नहीं मिला। पहचाना ही नहीं। क्यों नहीं पहचाना? नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए नहीं पहचाना कि ब्रह्मा की तो दाढ़ी मूछ वाले की पूजा ही नहीं होती। होती है, लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जिस माता में प्रवेश करता है जगदम्बा महाकाली के रूप में, वो महाकाली लंबे समय तक जगत पिता के साथ रहते हुए भी जगत पिता की एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी शक्ति उसे मिलती है लंबे समय तक। इतनी लंबे समय तक जगत पिता की शक्ति कोई भी मनुष्य आत्मा ने, चाहे गोप हो चाहे गोपी हो चाहे माला का कोई मणका हो, 108 का मणका बनने वाला हो या 8 का मणका हो, आत्मा रूपी किसी ने वो शक्ति प्रैक्टिकल में धारण नहीं कर पाई। संग की रंग की शक्ति जगदम्बा ने धारण की, तो प्रैक्टिकल में सबसे जास्ती शक्तिवान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसलिए वो जगदम्बा जब तामसी बनती है, जब ये संसार जगत बनता है, विश्व बनता है, विश्व धर्म इस सृष्टि पर पैदा हो जाते हैं, तब वो महाकाली के रूप में सारी आसुरी सृष्टि का, सारी आसुरी मनुष्य सृष्टि का बलि ले लेती है। कलयुग के अंत में
कोई देवता रह जाता है, सब रावण राज्य में आ जाते हैं, रावण के प्रभाव में आ जाते हैं, कि कोई राम को पहचानता है, कोई राम को जानता है, हैं? रावण को खुदान खास्ता कोई कोई पहचानते भी हो प्रैक्टिकल जीवन में तो 100% नहीं पहचान पाते, कभी निश्चय बुद्धि कभी अनिश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि बाप के ऊपर, निश्चय बुद्धि मना जन्म हुआ बच्चे का, और बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि माने बच्चे की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु लोक में कहे जाएंगे या अमर लोक में कहे जाएंगे, है कहां के वासी है? मृत्यु लोक के वासी। और मृत्यु लोक में रावण का राज्य होता है या राम का राज्य होता है? रावण का राज्य होता है। सब रावण संप्रदाय के भांति सारी दुनिया रावण संप्रदाय की प्रजा बन जाती, सब महाकाली पार्ट बजाती है, काट। कितना भी शक्तिशाली हो एक को नहीं छोड़ती। महाकाल गाया जाता है, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, लेकिन जो महाकाल गाया जाता है, शंकर रुद्र गाया जाता है, जिसके नाम से अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ का आरंभ होता है, वो महाकाल क्या प्रैक्टिकल में विनाश करता है, असुरों का संहार करता है, प्रैक्टिकल में इंद्रियों से करता है, नहीं करता? प्रैक्टिकल में असुर संहारणी गाई हुई है शक्तियां, वो देवता नहीं गाया हुआ है जिसे महादेव का टाइटल मिलता है। तो जो महाकाली गाई हुई है उसमें कौन सी शक्ति अचानक काम करती है कि पहले तो सरस्वती के रूप में गुप्त होती है, जगदम्बा के रूप में, और बीच में प्रत्यक्ष हो जाती है, फिर अंत में गुप्त हो जाती है। यही गायन है ना, है सरस्वती नदी का क्या गायन है? बीच में प्रत्यक्ष होती, बीच में ही गुप्त हो जाती। तो ये ऐसा ही महाकाली का पार्ट है जिसे सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या वो ऐसा खालिस पवित्र पार्ट बजाने वाली है कि खालसा के रूप में सारे संसार पर राज करती है? और यही बात ब्रह्म वाक्य में बोली गई, वेदवाणी में, जो वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है उसमें बोली गई यही वाणी है। क्या कि मैं प्रजापिता को वर्षा देता हूं? क्या वो सुप्रीम सोल किसको वर्षा देता है? प्रजापिता को वर्षा देता है, और प्रजापिता अपनी सारी एड़ी चोटी की पावर लगाकर जो भी सारी शक्ति है मानवीय जीवन की जो शक्ति कही जाती है वो सारी शक्ति किसमें तिरोहित कर देता है? प्रकृति में।
जिसे महाकाली का रूप दिया जाता है, जगदम्बा का सात्विक रूप कहा जाता है, महाकाली तामसी रूप है। जगदम्बा की पूजा होती है, उसमें भी चंद्रमा दिखाते हैं, प्रवेश है, पार्ट बजाने वाली आत्मा है, लेकिन वही ज्ञान चंद्रमा जब अपने शरीर से पार्ट बजाता था तो उसकी पूजा दाढ़ी मूछ वाले भिखारी मनुष्य के रूप में दिखाया जाता था, इसलिए पूजा तो होती नहीं। कब होती है पूजा? जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर त्याग करके किसी माता में प्रवेश करता है तो पूजा जाए। तो इससे साबित हुआ कि जगदम्बा तो डब्बा है, उसमें जो सहनशीलता की आगार है आत्मा, वो कौन है? ब्रह्मा वाली आत्मा। और जो जितना ज्यादा सहनशील होगा उतना ही ज्यादा सामना करने वाला भी होगा, इसलिए उसको शास्त्रों में धर्मराज युधिष्ठिर माना गया है। क्या है? धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो धर्मराज जगदम्बा को, धर्मराज युधिष्ठिर कहो, युद्ध के क्षेत्र में वो आत्मा स्थिर रहने वाली है, छोड़कर भागने वाली नहीं है। जो विरुद्ध है क्या? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि, ये विरुद्ध पहली बार दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा ने निभाया, वो ऐसा नहीं है। उसको जन्म देने वाला जो पिता था, ज्ञान का बीज डालने वाला, वो भी यज्ञ के आदि में वेदवाणी है, ब्रह्म वाक्य है कि उसकी लाश को गुम कर दिया गया। लाश भले गुम कर दी गई लेकिन उसकी भावना को कोई नहीं तोड़ सका। लाश गुम होने का कारण था क्या? कारण था कोई को पता होगा? धोबी घाट। हाँ, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है। शास्त्रों में कपड़ा किसको कहा गया है? शरीरम, शरीर को वस्त्र कहा गया, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया। शरीर रथ भी है, शरीर वस्त्र भी है। गीता में कहा वासांश जीर्णान यथा विहाय, जैसे आत्मा पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्यागती है और नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है, तो शरीर क्या हुआ? वस्त्र हुआ ना। तो ये जो शरीर वस्त्र है वो वस्त्र माता के रूप में ब्रह्मा ने धारण किया और उसके बाप ने भी धारण किया, जिसने ज्ञान का बीज डाला था ब्रह्मा में। तो कि तुम सत्युग में कृष्ण की आत्मा बनोगे, तुम्हारे साक्षात्कार का ये अर्थ है जो तुमने साक्षात्कार किया कृष्ण बच्चे का। तो जिसने साक्षात्कार किया था प्रैक्टिकल में, उसकी बुद्धि में बैठ गया, बाकी किसी की बुद्धि में नहीं बैठा। तो भले वो धोबी घाट की बात को लेकर के उस बेहद के वाशर में ने प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाले ने शरीर त्याग दिया, परंतु अपनी धारणा को नहीं त्यागा। क्या? नहीं, जो हाँ जो ब्रह्मा भी उनका विरोध करता रहा उन मंडली में, बोला है ब्रह्मा की आत्मा ने इंटरफियर करके बोला, ब्रह्म वाक्य में ही बोला, क्या बोला याद है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे, सामने बैठ करके योग की ड्रिल कराते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। हम समझते थे ये तो बहुत ऊंचा नंबर वाला में आ गया। उनको कितना समझाते थे विकार में मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। अब उनका पद भ्रष्ट हो गया। ये ब्रह्म वाक्य के महावाक्य हैं। ब्रह्म वाक्य पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें कोई काट नहीं सकता। तो क्या रिजल्ट निकला? हाँ, उसकी भावना को उसके शरीर की हत्या करने वालों ने हत्या भी भले कर दी, लाश को भी गुम कर दिया, फिर भी उसकी भावना को कोई तोड़ नहीं सका। क्या भावना? धोबी घाट वाली भावना कि वाशरमैन है तो प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। बेहद के वस्त्र हैं तो इन बेहद के वस्त्रों को साफ करने वाला बेहद का जो वाशरमैन धोबी है, जिसको सुप्रीम सोल ने ही स्वीकार किया है कि मैं बेहद का वाशरमैन भी हूं, बेहद का धोबी हूं, तो संग के रंग से कपड़े साफ होंगे या बिना संग के रंग से साफ होंगे? संग के रंग से ही साफ। खास उन आत्माओं के, जिन आत्माओं ने 63 जन्मों में ज्यादा विकारी सुख भोगा है, उस आत्मा के साथ। अरे सच रूपी रंगमंच का हीरो है तो पुरुष का जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा? और राजयोग में महारथी ही नहीं, क्या है, महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? है महारथी से भी ऊंचा कौन होता है? अरे एक होता है प्यादा, एक होता है घुड़सवार, एक होता है ऊंट सवार, एक होता है महारथी हाथी सवार, और एक होता है महावीर। तो जो महावीर का पार्ट बजाने वाला है वो कौन सी महावीरता है? हद की महावीरता तो हिंसा की होती है, जो हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर आदि ने दिखाई। लेकिन भगवान तो हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? अहिंसक युद्ध कराता है। गीता में ही बोला है, हे अर्जुन ये काम विकार को मार दे, जही एनम पापमानम, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से पैदा होते हैं, इनको नष्ट कर दे। तो देखो भगवान ने कोई किसी व्यक्ति को हिंसा करने की बात नहीं कही है गीता में। भगवान ने तो ये कहा है ये जो काम महाशत्रु है इसके ऊपर जीत पाए, इसको भस्म कर दे, राख बना दे। और शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि कामदेव को किसने भस्म किया, राख बनाया है? कहते हैं शंकर ने राख बनाई। तो जब राख बनाया तो काम को भस्म किया, अपने अंदर के कामदेव को भस्म किया, कि कोई बाहर का देवता था जिसको भस्म किया? अपने अंदर के काम को भस्म किया। और वो तो मुख्य डकैत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की मंडली है डकैतों की। उस मुखिया को नष्ट कर दिया तो सब अपने आप भाग खड़े होंगे। इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते, कौन सी इंद्रिय? काम इंद्रिय जीते जगत जीत। फिर उस काम इंद्रिय जो दसों इंद्रियों में से सबसे प्रबल होती है मनुष्यों को जीतने में, उन दसों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने वाला मन, ग्यारहवीं इंद्रिय, तो उसके लिए भी बोला है मन जीते जगत जीत। और मन के अंदर ही माया प्रवेश करती है, माया जीते जगत जीत। तो यहां की बात है, वो जो व्यक्तित्व है जो मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर नई सृष्टि रचने के लिए प्रैक्टिकल में बाप है, प्रैक्टिकल में साकार मनुष्य सृष्टि का पिता है, साकार स्वर्ग का रचयिता है, वो स्व स्वर्ग वो ही रच सकता है जो स्वयं स्थिति में गए गया, देवान में रहा तो स्वर्ग नहीं रच सकता। तो वो शिवलिंग यादगार है कि वो शंकर वाली आत्मा जो साकार शरीरधारी है, शिव निराकार का बड़ा रूप है, जो शिव सुप्रीम गॉड फादर ब्रह्म वाक्य बोलते हैं कि तुम बच्चे छोटे रूप ज्योति बिंदु को याद नहीं कर सकते हो निराकार को, तो बड़े रूप को ही याद करो। तो शिव जिसमें प्रवेश करता है वो शिव का कैसा रूप हुआ? बड़ा रूप हो गया। उसी बड़े रूप साकार को वो वरदान देकर जाता है, आप समान बनाकर जाऊंगा, जैसे मैं निराकार हूं वैसे तुम बच्चों को भी निराकारी स्टेज धारण करा के जाऊंगा। नंबर वन, तो जो अव्वल नंबर निराकारी स्टेज धारण करता है, आत्मिक स्थिति में टिकता है, अणु अणियांश मनुस्मरेत्य है, अनुरूप में निरंतर सदा काल के लिए संगम युग में टिक जाता है, जब तक सारी सृष्टि का विनाश हो और जब तक सारी सृष्टि का उद्धार हो, नई सृष्टि की स्थापना हो, तब तक के लिए वो ऐसा निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप धारण करता है कि शरीर होते हुए भी जैसे नहीं है। जैसे कहते हैं आंखें हैं लेकिन जैसे नहीं देखता, कान हैं लेकिन कान होते हुए भी नहीं सुनता, शास्त्रों में कहा गया है। तुलसीदास ने बोला बिनु पग चले सुने बिनु पाना, आनन रहित सकल रस भोगी। माने उसको पाँव नहीं है फिर भी चलता है, हाथ नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, इंद्रियां नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है। अरे भूत प्रेतों को स्थूल इंद्रियां होती हैं, होती है, उनको भी किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश होकर के देखना होता है। हाथों से काम करना पड़ता है, हिंसा करनी पड़ती है, मुख से इविल सोल दुर्वचन बोलती है, क्योंकि उनको साकार शरीर नहीं है। तो वो तो इतनी सूक्ष्म आत्माएं नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं। और जो सुप्रीम सोल है वो तो अणुअणियांशम, जो अनुरूप आत्माएं हैं, सूक्ष्म आत्माएं हैं, उन सबसे जाती ही सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि कही जाती है। तो वो तो इतना सूक्ष्म है कि उसको तो कोई इन आंखों से तो क्या, जो वैज्ञानिक यंत्र हैं वो भी उसको अनुभव कभी नहीं कर सकते। यहां तक कि मनुष्य आत्माएं भी उसकी गहराई को नहीं पा सकती, एक को छोड़कर। कौन एक? जो उस सुप्रीम सोल बाप का बड़ा बच्चा है। तुम बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई, बिंदु बिंदु आत्मा भाई भाई, भाई भाइयों में बड़ा भाई कोई है या नहीं है? जो है वो ही मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो गीता में गाया हुआ है, अश्वत्थम माहुर अव्ययम। ये मनुष्य सृष्टि अश्वत्थ वृक्ष है, इसका बीज और जड़ें इस सृष्टि पर फैलती है। इस सृष्टि पर वो बीज बोया जाता है। ये झाड़ उल्टा लटका हुआ है, इसकी शाखाएं दाईं ओर, इसकी शाखाएं बाईं ओर झुक करके अपना पार्ट बजाती हैं। अनेक धर्मों की शाखाएं हैं, अनुसंतताने। क्या? जो भारतीय धर्म की शाखाएं हैं वो दाईं ओर को झुकी हुई है। सच्चे रूपी वृक्ष के झाड़ को ध्यान से देखो, और जो विदेशी शाखाएं हैं विदेशी धर्मों की, वो बाईं ओर झुकी हुई है। बायां हाथ गंदा काम करने का सूचक होता है, और दायां हाथ दान धर्म अच्छा काम करने का सूचक होता है। माने जो भी भारतीय दाईं ओर के धर्म हैं, बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, वो सब एक नारी सदा ब्रह्मचारी में विश्वास रखने वाले। क्या? अब विविचारी बनकर रहो, विविचार में आसक्त होने वाले भारतीय धर्म नहीं है, ब्रह्मचर्य को तरजीह देने वाले। और विदेशी धर्म, उनके धर्म में नूद है ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, जो सारे विश्व के ऊपर तुम फैल जाओ और हिंसा करके सारे विश्व के ऊपर राज्य करो। तो देखो वो जो विदेशी शाखाएं हैं वो गंध फैलाने वाली हैं संसार में, गोमूत्र से पैदा करने वाली, पैदाइश बनाने वाली हैं, या शेष इंद्रियों से पैदाइश सिखाने वाली धर्म है। भगवान है जो देवताओं से भी जास्ती ऊंच कर्म करना सिखाता है। देवताएं तो ज्ञान इंद्रियों से सुख लेते हैं और संसार पैदा करते हैं, बाल बच्चों की पैदाइश करते हैं, लेकिन भगवान तो इंद्रियों से भी परे, इंद्रियाति। अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी माने पवित्र संबंध, गुप्त संबंध जिन्होंने भगवान बाप के साथ जोड़ा है। संबंध साकार में ही जोड़े जाते हैं, बिना इंद्रियों के कोई संबंध नहीं गाया जाता है। तो ऐसा संबंध जोड़ना सिखाया कि इंद्रियों की जिसमें दरकार है ही नहीं। इंद्रियातीत सुख, अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, उससे सतयुग के पहले जन्म के देवताओं की पैदाइश होती है, जिन्हें कहा जाता है 16 कलश। भूसा गिरती कला वाले, क्या सतयुग के जो देवताएं 16 कला से नीचे गिर करके अगले जन्म में 15 कला में जन्म लेते हैं अगली पीढ़ी, ऐसे ही और नीचे गिरते हैं तो 15.5 कला की पीढ़ी में जन्म लेते हैं। कलाएं क्षीण होते होते त्रेता में 14 कलाएं, द्वापर आते आते 8 कलाएं और कलयुग में आते आते कलाएं, काया कला सारी चट्ट हो जाती है। तो इंद्रियों का सुख है नीचे गिराने वाला, और भगवान कौन सा सुख देते हैं? अतीन्द्रिय सुख देते हैं। कैसा सुख? अतीन्द्रिय सुख, ऐसा सुख है जो विश्व विजय सिखलाता है। क्या? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, सारे विश्व के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका हिटलर, नेपोलियन, बोनापार्ट वगैरह, अलेक्जेंडर, एक टाइगाइन है विश्वनाथ जगन्नाथ, वो विश्वनाथ ऐसा पालना करता है प्रजा की, प्रमाण प्रकृष्ट रूपेण जा माने जन्म देने वाला, जन्म लेने वाली प्रजा कैसी है? प्रकृष्ट जन्म लेने वाली, इंद्रियों से जन्म नहीं होता उस प्रजा का, काहे से जन्म होता है? वाइब्रेशन से जन्म होता है। आज ब्रह्मा कुमार कुमारियां, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अपन को कहने वाले 80 साल हो गए, कितनी इंद्रियों से भाग दौड़ कर ली, कितनी ज्ञान इंद्रियों से दृष्टि का लेन देन कर लिया, कितना वाचा का बवंडर मचाया भाषणबाजी की, लेकिन क्या सारे संसार में ज्ञान की लहर फैल गई? फैल गई नहीं, क्योंकि जो भी सेवाधारी हैं, जिसे यज्ञ कुंड में जो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड है उसमें रुद्र की जो लास्ट स्टेज है उस स्टेज को कोई भी नहीं पहुंच पाया, वाइब्रेशन से सेवा करने की स्टेज, क्या योग बल से सेवा करने की स्टेज। वाइब्रेशन एक ऐसी शक्ति है जो इंद्रियों की शक्ति और मन की शक्ति को भी क्रॉस कर जाती है, क्योंकि मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। ये बुद्धि रूपी आत्मा वाइब्रेशन दुनिया का कंट्रोल करती है, मिसाल है। नेहरू जी के पीछे कोई भी विरोधी पीछे से गालियां देता था, विरोध करता था, और जब वो सामने आ जाते थे तो कोई भी उनका विरोध करते हुए नहीं देखा गया। ये कौन सी ताकत है? ये वाइब्रेशन की ताकत। विवेकानंद अमेरिका में जाकर भाषण किया, लोगों ने पूछा आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है जो इतनी पब्लिक को आप प्रभावित कर लेते हैं, तो उन्होंने बताया, अभी बताता हूं। थोड़ी देर भाषण देते रहे और अचानक एक तरफ जोर से भाग खड़े हुए, सारी सभा को छोड़कर, और सारी सभा उनके पीछे पीछे भाग खड़े हुए। फिर रंगमंच पर आकर बताया ये कौन सी ताकत है, वो वाइब्रेशन की पावर कहेंगे, ये बुद्धि की पावर है, मन की संकल्प विकल्प शक्ति नहीं, क्योंकि मन अच्छे संकल्प भी करता है और बुरे संकल्प भी करता है। बुद्धि के कंट्रोल में है तो अच्छे संकल्प करेगा, और बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो गड्ढे में ले जाएगा। ये बुद्धि की लगान लगाना, लगाम लगाना बहुत जरूरी है, जो गीता में दिखाई गई। भगवान ने क्या किया, जो मनरूपी घोड़े हैं, इस मनुष्य सृष्टि के चार मुख्य मनरूपी घोड़े हैं। क्या? मनुष्य के रूप में चार बीज हैं, ब्रह्मा के चार मानसी पुत्र सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, ये चारों चार मुख्य धर्म के बीज बाप हैं। एक सत्य सनातन धर्म का बीज सनत कुमार, सनत कुमार के नाम से सनातन धर्म, जैसे बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम होता है ना, ऐसे थोड़े हिंदू नाम कह दिया। अरे हिंदू जानते ही नहीं है हमारा धर्म शास्त्र कौन सा है, हमारा एक धर्म पिता कौन है, हमारे धर्म पिता ने क्या धारणाएं सिखाई, उन धारणाओं का धर्मशास्त्र कौन सा है, भूल गए। धर्म पिता को भूल गए, धर्मशास्त्र को भूल गए, अपने धर्म का नाम भूल गए। दूसरे धर्म वाले जानते, इसलिए दूसरे धर्म वाले उत्थान इस दुनिया में उनका उत्थान हो रहा है, और भारतवासी दुनिया की नजरों में नीचे गिरते जा रहे हैं, लोन लेते जा रहे हैं, भिखमंगे बन गए, भिखमंगा भारत। ऐसे भिखमंगा भारत को जो अकूट ज्ञान धन संपत्ति का अकूट भंडारी है शिव सुप्रीम सोल, बापों का बाप, क्या दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो बाप बनते हैं, उन बापों के भी बाप धर्म पिताएं बनते हैं, उन धर्म पिताओं का भी बाप प्रजापिता, और प्रजापिता का भी बाप कौन, शिव बाप, जिसका कोई बाप, तो वो शिव बाप ऐसी अखूट धन संपत्ति देता है जिसके आधार पर उसका नाम मनुष्यों ने विकारी बुद्धि होने के कारण वसुदेव समझ लिया। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला, क्या नाम दे दिया वसुदेव, और उसके बच्चे का नाम वासुदेव, जैसे ब्रह्मा के बच्चों का नाम ब्राह्मण, बच्चे के अर्थ में मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो शास्त्रों में कैसा अगड़म बगड़म हो गया, जिस अगड़म बगड़म को कोई सुधार ही नहीं सकता, एक ही शास्त्र है सारी दुनिया के बीच, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान का गाया हुआ गीत है। दुनिया में कोई शास्त्र नहीं जो भगवान का गाया हुआ हो, भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान हो जिसमें, और उस भगवत गीता की क्या दशा कर दी, जो आया पंडित विद्वान बनकर के बैठ गया और टीका करने लगा, बड़ा टीकाकार के नाम में संसार में प्रसिद्ध हो गया, सबसे जास्ती प्रसिद्ध हो गया शंकराचार्य, शिवोहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूं। अरे ये धर्म पिताएं सब अपने को भगवान मानने लगे, समझते हैं हम जो भाषणबाजी करेंगे, हम जो सुनाएंगे, उससे दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। अरे कोई भी धर्म पिता के आने के बाद ये दुनिया स्वर्ग के तरफ जाती है या नरक की तरफ जाती है? नरक की ओर जाती है। सभी धर्म पिताओं ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने इस दुनिया को आकर नरक बना दिया। एक भगवान ही है जो अंग्रेज लोग गाते भी हैं, हेवनली गॉडफादर। क्या गाते हैं? भगवान जो सुप्रीम गॉडफादर है वो उसे कहा जाता है जो हेवन रचता है। क्या मुसलमानों में भी मानते हैं कि अल्लाह मियां ने क्या रचा? जन्नत रची, और जन्नत में आदम और ईव को शिक्षा देकर भेजा, ऐसा करो ऐसा ना करो। तो साबित हुआ ना, क्या मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया को जन्नत कौन बनाता है? खुदा बनाता है। जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता। ये बात ब्रह्म वाक्य में भी बोली है मुरली में, मैं कब आता हूं कब जाता हूं ये किसी को पता ही नहीं पड़ता। इस ब्रह्मा को पता चलता है जिसमें प्रवेश करके मैं बोलता हूं मुझसे। है बिना पुकारे कैसे आ सकता है? गांधी जी इसका प्रूफ है। दुनिया में 40 करोड़ ने मिलकर के आवाज लगाई, हे पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, राम राज्य लाएंगे। तो देखो पुकारा ना, पुकारा आया? उसके बुलाने से नहीं आया है? वो तो एक बात बताई कि तुम बच्चे मेरे को बुलाते हो, पतित पावन कह करके बुलाते हो, पतित पावन सीताराम, तो तुम पतित से पावन बनते हो। 16 कला संपूर्ण, जो पतित पावन कह करके मेरे को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी बुलाते ही नहीं, या दूसरे धर्मों में जन्म लेने वाली मनुष्य आत्माएं या धर्म पिताएं मेरे को बुलाते ही नहीं, पतित पावन सीताराम कह करके वो पतित से पावन बनते। ये ब्रह्म महावाक्य है। तो ये बात नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो पतित पावन तब ही कहा जाएगा जब पतितों को पावन पने का, पवित्रता का संग लगाएगा। जो विष्णु की चित्र में दिखाया है, विष्णु को चंदन के रूप में दिखाया है वृक्ष, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या चंदन के वृक्ष में कितने सर्प लिपटे रहते हैं? चंदन के वृक्ष में लिपटे रहने वाले सर्प बड़े विकारी होते हैं, बड़े कामी होते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष को विषैलापन नहीं आता, संग का रंग नहीं लगता। तो ये विष्णु का यादगार है संपूर्ण रूप का। क्या संपूर्ण रूप है? विष्णु स्वरूप परम पद संसार का, सृष्टि का आदि रूप। कैसा रूप? आदि रूप। सर्प सर्पणियों की शैया पर पड़ा रहे, सारी रात भले पड़ा रहे, लेकिन उसको कोई लेप छेप लगने वाला नहीं है। नहीं तो मनुष्य मात्र की रजाई में एक सपोला घुस जाए और उसे पता चले सांप है तो क्या करेगा? बुरी बुरी तरह उठ के भागेगा। और वो निर्विष है, सदा निर्विष है। जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, तब तक निर्विष है। और जब शरीर की स्मृति ही खत्म हो जाए, शरीर ही विस्मृत हो जाए, शरीर की इंद्रियां ही विस्मृत हो जाएं, मन अव्यक्त हो जाएं, तीसरी आंख उन इंद्रियों को देख सकती है लेकिन इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगी, ये साकार आंखों वाले इस दुनिया में समझते हैं कि शिव ने भी वही कार्य किया जो मंदिर में यादगार रखी है और हम भी वही कार्य करते हैं तो बुरा क्या है। लेकिन तीसरे नेत्र से ये नहीं देख सकते कि वो जो कर्म कर रहा है वो पूजनीय कर्म कर रहा है, इसलिए पूजा होती है। क्या पूजनीय कर्म? कर्म योगी, कर्म इंद्रिय से कर्म करता है लेकिन लेकिन योग युक्त होकर, जो बुद्धि है मन को कंट्रोल करके, मन बुद्धि के संकल्पों को कंट्रोल करके आत्मा निसंकल्प स्टेज बिंदु में टिक गई। फिर बोलता है मन मना भव, सारी सृष्टि के लिए यही मंत्र है, मन मना भव, मेरे मन में समा जाए। कौन बोलता है? निराकार बोलता है बापों का बाप, या साकार बोलता है? निराकार को मन ही नहीं, साकार को मन है, साकार को लिंगेंद्रिय है, वो ही कंट्रोल करेगा जिसको है। तो ये योग बल की बात बताई कि योग बल से विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला इस संसार में पैदा हुआ है, सारे विश्व के ऊपर कंट्रोल करने वाला ऐसी राजधानी स्थापन करता है। कैसी? जो बोला ब्रह्म वाक्य, तुम बच्चों का ब्राह्मणों का किला रूपी संगठन ऐसा बन जावेगा जिसमें एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। आज की दुनिया में सबसे बड़े जासूस हैं अंग्रेज, हर देश में उनके जासूस घुसे हुए हैं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं और उन्हीं कमजोरियों को पकड़ करके हमला करते हैं। लेकिन तुम बच्चों का वाइब्रेशन, तुम बच्चों का ब्राह्मणों का संगठन कैसा बनेगा? वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा संगठन ब्राह्मणों का तैयार होने वाला है जल्दी। वो ब्राह्मण पांडव हैं, पंडा के बच्चे, शास्त्रों में उसका नाम पांडु रखा गया। क्या?
पांडु।
कितने पुत्र थे? हैं? पांच पुत्र थे। तीन पुत्र थे कुंती की औलाद और दो पुत्र थे माद्री की औलाद। माद्री नाम क्यों पड़ा? मंदबुद्धि, मंदबुद्धि की औलाद। जैसे रावण की पत्नी का नाम क्या था? मंद उदरी। मंद माने जड़त्वमयी बुद्धि, चलती नहीं ज्यादा, गहराई में नहीं जाती। उदर माने पेट, ये बुद्ध रूपी पेट, ये सुर पेट की बात नहीं। मंदोदरी नाम था, बोई मंदोदरी को बोई क्या कहो? माद्री को। उसके दो पुत्र बताए बाद में पैदा हुए हैं, हाँ, नकुल और सहदेव। तीन
कितना घायल है और अर्जुन को नहीं है।
हाँ ज्यादा ताकतवर है ना, क्योंकि कुंती पहले माता बनती है या माद्री पहले माता बनती है। बाप की जो पवित्रता रूपी जो शक्ति है, सत्व है, सत्त है, वो ज्यादा कौन सी माता धारण करती है, है? कौन कुंती धारण करती है। इसलिए उससे पैदाइश होने वाली जो रचना है वो ज्यादा पावरफुल है। युद्धिष्ठर, युद्ध में स्थिर रहने वाली। देहं वा पापयामि कार्यं वा साधयामि। शिवाजी का नारा क्या था, देह बनी चली जाए लेकिन जो कार्य करना है वो करके छोड़े। ऐसे भी मिसाल हुए हैं युद्धों में कि दुश्मन योद्धा ने तलवार से सर काट दिया लेकिन जिसका सर काटा उसके अंदर ये भाव भरा हुआ है कि मेरे ऊपर वार करने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता, और सर कटा हुआ कट के गिर गया और उसने दौड़ के छलांग लगा के उसका सर काट दिया। ऐसे ऐसे हिस्ट्री में प्रूफ है। ये क्या है, ये संकल्प शक्ति है, ये भावना है। जो तुलसीदास ने बोला है भाव प्रधान विश्व रचिरा था, उस भाव को धारण करके जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ऐसे नहीं यज्ञ के आदि में जिसकी हत्या कर दी गई तो जिसकी हत्या होती है उसको भूत प्रेत का जन्म मिलता है, ऐसा बिल्कुल हमेशा पक्का नहीं है। ये भाव के ऊपर है। हमारी भारतीय संस्कृति में खास गीता में ये बात आई है कि युद्धस्थल में जो मरता है युद्ध करते करते वो स्वर्ग में जाता है, वो नरकगामी नहीं हो सकता। हाँ हाथ हतो वा हाँ प्राप्त से स्वर्गम, जीता रहेगा तो विश्व के ऊपर राज्य करेगा। अरे विश्व पिता, सारी दुनिया का पिता जो बनेगा वो तो हीरो पाटधारी है ना, है? सारी दुनिया का पिता, सारी दुनिया का पति भी तो है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी है तो पति भी है। पहले पिता होता है बाद में स्वामी होता है पति होता है। तो सच्चा पिता वो है जो गांव में आग लग गई जोर से, भयानक तूफान चल रहा है, घर में आग लग गई, बच्चे सारे झुलस रहे हैं, तो सच्चा बाप होगा तो क्या करेगा, भाग जाएगा है? क्या करेगा, बच्चों को निकालेगा या छोड़ देगा? दो चार बच्चों को निकालेगा फिर भाग जाएगा है? आखिरी बच्चे को भी छोड़ेगा नहीं। वैसे भी देखा जाता है माँ बाप का जो प्यार होता है या तो बड़े बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है या तो सबसे छोटे बच्चे की पालना ज्यादा करते हैं, प्यार से करते हैं। तो यही है इस दुनिया में काम विकार की अग्नि इतनी तेजी से प्रज्वलित होती जा रही है कि कामाग्नि में सारा विश्व इतना भयंकर गति से जलेगा
कि सब खलास होने वाले, सब खलास हो जाएंगे तो नई सृष्टि कहां से आएगी। इसलिए रुद्राक्ष गए हुए हैं, क्या रुद्राक्ष बीज जो पहाड़ पर पैदा होते हैं वृक्ष में, वृक्ष भी बहुत ऊंचे होते हैं, पहाड़ माने ऊंची स्टेज याद की क्या, हाँ ऐसी ऊंची स्टेज उनकी बनती है आत्मिक स्मृति में कि वो आत्मा रूपी ज्योति बिंदु बीज ही बन जाते हैं, उन्हें इंद्रियों की स्मृति रहती है। इसलिए जो पुराने पुराने शिव के मंदिर हैं उनमें लिंग बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे 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 बनाते हैं। किसकी यादगार है वो छोटे छोटे शालिग्राम जिन्होंने अपने को आत्मिक रूप में स्थिर किया है उसकी यादगार है। और जो बड़ा लिंग दिखाया है वो बाप समान स्टेज धारण करता है, उस बाप की यादगार। इसलिए प्राचीन काल में रुद्र यज्ञ रचे जाते थे, बड़े बड़े सेठ कोई लाख शालिग्राम बनवाते थे, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, जितना बड़ा सेठ उतने बड़े शालिग्राम ज्यादा बनवाते थे, सुबह को बनवाते थे दोपहर तक और शाम को तोड़वा देते। कहां की यादगार है, इस संगम युग की यादगार है जिस शालिग्राम आत्मिक स्थिति में अभी तैयार हो रहे, आत्मिक स्थिति धारण करेंगे देह की स्मृति नंबर वार भूलेंगे और नंबर वार जो मनुष्य सृष्टि का बाप है क्या कहा जाता है, देवाधिदेव, उसके गले का हार बनते हैं, माला बनते हैं, माला रूपी संगठन में पिरोए जाते हैं। अब्बल नंबर की माला 8 की सर पर दिखाते हैं अष्टदेव, दूसरे नंबर की माला गले में विजय माला के रूप में दिखाते हैं, तीसरे नंबर की माला 16,000 की माला जो भावों में लिपटी हुई होती है, 16,000 की माला पुराने पुराने मंदिर में आज भी देखने को मिलती है, बड़ी गरारी उस पर वो 16,000 के मणके नीचे तसले में फैले हुए और 4-4, 6-6, 10-10 लोग मिलकर के जाते हैं और माला को खींचते हैं। किस समय की यादगार, आगे आने वाला जो समय है उस समय इतना विरोध दुनिया में बढ़ जाएगा इन विश्व की बादशाही पाने वाले बच्चों का कि दूसरे धर्म वाले बहुत ही विरोध करेंगे। इसलिए अकेले दुकेले नहीं घूमेंगे सेवा के क्षेत्र में, गैंग का गैंग सेवा करने के लिए निकले। इसलिए माला को इकट्ठे हो करके खींचते हैं और 16,000 की माला आखिर तैयार होती। तो बताया इससे रुद्राक्ष के मणकों का मुखिया कौन हुआ, रुद्र, जिसे शंकर कहा जाता है। मेरा शिव तो कहते हैं, मेरा तो एक ही नाम है शिव, वो कभी बदलता नहीं, निराकारी स्टेज की यादगार। लेकिन जब मैं सृष्टि में आकर प्रवेश करता हूं तो तुम बच्चों की 2 रूपों में पूजा होती है, साकार देवता के रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। शालिग्राम देखा होगा उसमें बंधन होता है, माना जो रुद्र रूप आत्माएं हैं वो इस मनुष्य सृष्टि में बंधन में आने वाली आत्माएं हैं। एक आत्मा है जो निर्बंधन होती है, शिव समान, कोई भी बंधन नहीं। और सबको नंबर वार निर्बंधन बनाती है। तो बताया कि सिवाय उस पूज्य के, पूज्यते पूज्य के, फिर कोई भी पूज्य नहीं बना सकेगा, बाकी सब हो गए पुजारी। जिनके आगे शिवलिंग रखा जाता है, पुराने पुराने मंदिरों में लिंग बीच में और बच्चे शालग्राम के रूप में छोटे छोटे पत्थर गोल गोल पड़े हुए, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यही है शिवलिंग जो पुजारी ते पूज्य बनाए सकते हैं। क्या जो पुजारी से क्या बना सकते हैं? पूज्य बना सकते हैं, और तो कोई बना ही नहीं सकता, क्योंकि इवर पूज्य है ना। और तुम बच्चों को ब्रह्म वाक्य में सिखाया है, क्या बुद्धिमान बाप के, बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होते? तो सुप्रीम सोल निराकार, उसको प्रैक्टिकल में एवर पूज्य कहे हैं? क्या प्रैक्टिकल में एवर पूज्य कहे हैं? प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है, शरीर की इंद्रियों के द्वारा होता है। और ब्रह्म वाक्य है कि मेरा तो लिंग ही पूजा जाता है और इंद्रियां मेरी नहीं पूजी जाती। देवताओं की और सभी इंद्रियां पूजी जाती हैं, हस्त कमल, पाद कमल, नैन कमल, मुख कमल, जो किंग फ्लावर है कमल, उससे उपमा देते हैं कि फूलों में वो ही श्रेष्ठ है। तो देखो ये जो मेरा लिंग पूजा जाता है, तो उसको क्या लिंग होता है? सुप्रीम सोल को, उसको तो लिंग होता ही नहीं। तो कौन कहता है मेरा लिंग की ही पूजा होती है? जिस साकार में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल विरुद्ध लेता है, मैं तुमको आप समान बनाकर जाऊंगा, जैसे मैं निराकारी निर्विकारी निरहंकारी हूं, वैसे तुम बच्चों को भी नंबरवार बनाकर जाऊंगा। तो जो अव्वल नंबर है वो सबके बीच में एवर पूज्य होना चाहिए प्रैक्टिकल में या नहीं होना चाहिए? एवर पूज्य, एवर पूज्य का मतलब है प्रूफ चाहिए। क्या प्रूफ है? हाँ, जो कामेंद्रियों को जीतना किसी के बस की बात नहीं है, वो एक ही है जो कामदेव को भस्म करने वाला बताया जाता है शास्त्रों में। कौन? शंकर। वो कोई बाहर का देवता नहीं है जिसको भस्म कर दिया हो, वो अंदर की बात है। वो सभी विकारों का, जो भी विकार रूपी चोर डकैत हैं, उन सब का मुखिया है काम, उसको भस्म कर देता है। क्या भस्म कर देता माने यादगार क्या है? नहीं, उसकी यादगार है कि शंकर को भस्म रमाए दिखाया जाता है सारे शरीर में, सभी इंद्रियों में भस्म। मना
इंद्रियों को भस्मसात कर दिया, इंद्रियों की पावर चल नहीं सकती, इंद्रियां राख हो गई जैसे। बाकी ऐसे नहीं कि इंद्रियां होती नहीं है, इंद्रियां होती हैं, लेकिन स्मृति की कमाल है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, काहे से नष्टो मोहा, देह और देह की इंद्रियों से नष्टो मोहा। देह से कोई भी सुख नहीं लेना, देह की इंद्रियों से कोई भी सुख नहीं लेना।
ऐसे भी नहीं कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना, ये तो सन्यासियों ने सिखाया है, भगवान बाप आकर के प्रवृत्ति मार्ग में रहना सिखाते हैं। उनका यादगार है शिवालय में रखा शिवलिंग प्रवृत्ति में है या निवृत्ति में है, प्र माने प्रकृष्ट,
वृत्ति माने व्रत, क्या स्त्री पुरुष जब एक दूसरे को गोद में लेते हैं, इंद्रियों से जब विकृति करते हैं, गोद में लेते हैं, तो व्रत बन गया। वो व्रत शिवलिंग के आसपास दिखाया जाता है, उसको कहते हैं जलाधारी, ज्ञान जल को धारण करने वाली वो जलाधारी माता गुरु है पुरुषों के लिए। इसलिए ब्रह्म वाक्य है पुरुष साप दुर्योधन दुशासन, काम विकार के उद्वेग में जब आते हैं तो जानवर बन जाते हैं। कन्या को क्या तकलीफ होती है, ये जैसे जानवर नहीं सोचता वैसे सोच ही नहीं सकते। तो बताया कि काम विकार को जीतना बड़ा कठिन है सिवाय राजयोग के। राजयोग ऐसा है जिसमें कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं, जिसकी यादगार अमरनाथ में दिखाई गई, क्या बर्फ का, क्या लिंग कोई बर्फ का होता है, ये कवि की कविता है, भावना है, उस भावना को कैसे व्यक्त करे। इसलिए जो द्वापर के आदि में जो भी मूर्तिकार हुए, चित्रकार हुए, उनकी भाव भंगिमा ने अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में गुप्त रूप से वो चित्रों का निर्माण कर दिया। उनमें एक अमरनाथ मंदिर भी दिखाया गया जहां बर्फ का लिंग बनता है। वास्तव में बर्फ का लिंग तो प्रैक्टिकल में हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो योग बल है जिसे सहज राज योग बल कहा जाता है। गीता का ज्ञान सहज राज योग, सहज ज्ञान जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सिखाता है, लेकिन जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। क्या गुड़, है वो भी देखता है कि मेरी पढ़ाई पढ़ने के लिए कौन से बच्चे हैं जो तन मन धन समय संपर्क सब कुछ इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा करते हैं। कौन सा यज्ञ कुंड,
अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड, इसका विनाश होता नहीं। ऐसे नहीं संगम युग खत्म हो जाएगा तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर में देवताओं की सृष्टि में भी देवताएं ज्ञान के सार रूप ज्योति बिंदु में टिकेंगे। ज्ञान का सार क्या है? आत्मिक स्थिति निरंतर बनी रहे। और जब द्वैतवादी द्वापर युग आएगा तो भी बुद्धि में ज्ञान टिका रहेगा। द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक जिसकी बुद्धि में ज्ञान टिका रहे उसका नाम रखा है भारत। किसमें रथ लगा हुआ? ज्ञान के रोशनी में ही सदैव रहने वाला। उसका दूसरा नाम भी है नारायण। क्या? नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ घर है उसका? ज्ञान जल में ही उसका घर है। दूसरा कोई घर नहीं है उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा का। ये जाकर के रसिया में एटम बम बनाना सीखेगा। भौतिक विद्या, पंचभूतों की विद्या, भौतिकवाद होता है ना। आप सारी दुनिया पागल हो गई है भौतिकवाद के पीछे। पंचभूतों का ही बुद्धि में आलोड़न चलता रहता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, नौकरशाह हो, सात की बुद्धि पंच तत्वों के विश्लेषण में लगा हुआ है, पंचभूतों का आलोड़न कर रही है। सारी दुनिया भौतिकवादी बन गई। ये द्वैतवादी द्वापर युग से जब से ये पंचभूतों को तरजीह देने वाले देह अभिमानी धर्म पिता आए, सब भौतिकवादी बन गए। अब क्या बनना है? वो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर सिखाता है कैसे सारी सृष्टि का कल्याण होना है, कैसे ये दुनिया नरक से स्वर्ग बनेगी। वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी, सारा जगत क्या बनेगा? एक परिवार बनेगा, एक कुटुंब का, एक मुखिया, एक बाप। उस बाप को, उस आदम को, एडम को, आदिनाथ को, आदिदेव को सारी दुनिया मानेगी, पहचानेगी और उस बाप से पहचान करके मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी लेगी। कैसे लेगी? तन धन धाम सुहद परिवार, सबकी ममिता ताग बटोरी। ये तन, ये बैंक बैलेंस, धन, ये मेहलवानियां, अटारियां, सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ मार की बनती जा रही है। बनाने वाले बना रहे, तो जहां उनका धन होगा वहां मन जाएगा कि नहीं? नियम है, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन हो। तो तन धन धाम सुहृद जो मित्र संबंधी हैं, संबंधी हैं देह के, इन सब के अंदर से जो ममता सबके प्रति जा रही है, ममत्व भाव जा रहा है, उस ममत्व भाव को खींच करके एक में लगाना। जिसका गायन महाभारत में है कि उसमें इतनी शक्ति आ जाती है एक लव्य में, एक को लव करने वाले में, कि पांडव हो चाहे कौरव हो सौ, कोई भी उसको युद्ध विद्या में जीत नहीं सकते। इतना तीव्र ज्ञान ही है, ज्ञान के तीर चलाने वाला एकलव्य बनता है। तो यही बात बाप बताते हैं ब्रह्म वाक्य में। क्या नहीं बताते हैं? भारतवासियों ने अनेकों की सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। हिस्ट्री देख लो 2000 वर्ष की, इस्लामी आए, बौद्ध आए, क्रिश्चियन आए, जो भी धर्म पिताएं आए धर्म, उन धर्मों में भारतवासी कन्वर्ट हुए हैं उनकी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके। इन भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। अब करना क्या है? ब्रह्म वाक्य पक्के हैं, एक ऊंचते ऊंच को पहचानो कि वो ही सृष्टि पर कहां प्रतिकल में कार्य कर रहा है, वो कौन है निराकार सो साकार इस सृष्टि पर बनता है। वो जो ज्ञान देता है वो उसी का ज्ञान देता है, किसका? मनुष्य सृष्टि के साकार पार्टधारी हीरो पार्टधारी का ज्ञान वो देता है। क्या उसकी पहचान भी उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, और जिसमें प्रवेश करता है उसकी पहचान भी उस साकार के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। यही जानो ते ही देव जनाई, जानत तुम्हें ही हुई जाई। वो स्वयं हुई अपना परिचय देता है, इसलिए स्वयं भू कहा जाता है, स्वयं जन्म लेने वाला कहा जाता है। इसलिए बताया जानत तुम्हें हुई जाई, तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। उसको जानने वाला उसको जानने वाला, उसको तो सब जान ही नहीं पाते, उसको तो जो आत्माओं का बाप है उसको तो आत्माओं रूपी बच्चों के बीच में जो बड़ा बच्चा है वो ही जान पाता है, वो ही इसकी अकूट ज्ञान भंडार की प्रॉपर्टी ले पाता है वो। लेकिन उसको भी कौन पहचानता है? कोई भी नहीं पहचान सकता, वो स्वयं ही अपना परिचय देता है, उसका परिचय कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए बोला जानत तुम्हें हो जाए, तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा, मन तुम्हारा बच्चा बन जाएगा। कैसा बच्चा? वसुधैव कुटुंबकम, सारी मनुष्य शक्ति अनुभव करेगी। क्या अनुभव करेगी? क्या कि वही हमारा है और इस दुनिया में कोई हमारा नहीं है, साफ धोखेबाज। यहां तक कि हमारा है यथा राजा तथा प्रजा, वो विश्व का मालिक जैसे अपनी परवरिश करता है वैसे ही सारे संसार की परवरिश करता है। ऐसे नहीं कि श्रीनाथ दरबार की तरह खुद मुअल पुए खाए और अपने आसपास चक्कर काटने वालों को माल पुए खिलाता रहे। दो यादगारें हैं ना, श्रीनाथ पश्चिम में भारत के पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक और जगन्नाथ पूरब में भारत के पूर्वी सभ्यता का प्रतीक। क्या अंतर है? श्रीनाथ में घी के मालपुए बनाए जाते हैं, घी की 36 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और बड़े बड़े धनवान लोग उसको खरीद खरीद के खाते हैं। जो ज्यादा पैसा देगा वो बड़े बड़े मिष्ठान बढ़िया बढ़िया खाएगा। न मानो तो जो बड़े बड़े आदमी हैं इस दुनिया के उनके साथ चुपके से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाके आज भी देख लेना, उनकी बड़ी आवभगत होती है। 36 प्रकार के भोग खिला करके जगन्नाथ भंडारे में चले जाओ, क्या जो बाप के बीज रूप मणके हैं, बाप समान बीज हैं, उनके परिवार में चले जाओ, जो एडवांस पार्टी कही जाती है, कोई खिचड़ी मिलेगी। यादगार जगन्नाथ मंदिर में चले जाओ, वही चावल मिलेंगे, वही कढ़ी मिलेगी, दाल चावल बस। और सबको मिलेगी क्या? किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा कि तुम मंदिर में बैठ करके पूजा तो तुमने की नहीं, तुम तो यहां आते भी नहीं कभी, तुम कैसे खाने के लिए आ गए? नहीं, और किसी के लिए भोजन कम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा जगन्नाथ का भंडार माना यथा राजा तथा प्रजा। आज की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट के जो भी बड़े बड़े शासन करता है वो अपने लिए, अपने परिवार पेट से पैदा होने वालों के लिए स्विस बैंक में पैसे बचा बचा के रखने वाले हैं, प्रजा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। उनको नहीं कहेंगे यथा राजा तथा। ये वसुधैव कुटुंबकम अब बनने वाला है, ये सारी वसुधा एक कुटुंब की तरह पलने वाली है, पलेगी। एक मुखिया देखने में आएगा, ऐसी नहीं है कि ये देवी देवता सनातन धर्म लोप हो गया है। नहीं, गीता में है, प्रायः लोप होता है। आज भारत में अभी भी दक्षिण भारत में ऐसे ऐसे 70-70, 60-60 लोगों के परिवार हैं जहाँ पूरे परिवार का एक मुखिया, सब एक कीमत पर चलने वाले, एक चूल्हे पर रोटी। मजाल है जो परिवार के अंदर जेठानियों में और देवरानियों में विचार फैल जाए, झगड़ा शुरू हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक जनता पार्टी को वोट दे, दूसरा बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट दे, तीसरा सपा पार्टी को वोट दे। नहीं, जहां एक जाएगा वहां सब जाएंगे। ऐसे परिवार अभी भी हैं, तो प्रायः लोप होता है देवी देवता सनातन धर्म, जहां एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अलग अलग भाषा नहीं बोलेंगे कि मुखिया कुछ और कहे और बच्चे कुछ और कहे। तो बताया इस दुनिया में सभी पुजारी बनते हैं, जो सतयुग का नारायण है, जिस नारायण को कीर्तन में याद करते हैं भक्त लोग, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। अरे कृष्ण को तो तुमने द्वापर के अंत में दिखाई दिया, तुम नारायण के यहां जोड़ देते हो उसके साथ, तो जानते हैं कि नारायण का सतयुग आज में राज्य था, वो 16 कला संपूर्ण नारायण उसकी यादगार में बिरला मंदिर बने हुए हैं, जहां विष्णु की मूर्ति भी दिखाई जाती है, बिरला मंदिर। तो देखो वो बिरला व्यापारी कोई एक बिरला व्यापारी है ज्ञान रत्नों का, जिसकी यादगार में वो मंदिर बने हुए हैं, बिरला मंदिर। वो स्थूल धन संपत्ति का बिरला व्यापारी है, भक्ति मार्ग की दुनिया का और वो ज्ञान मार्ग की दुनिया का बिरला व्यापारी। तो वो बिरला व्यापारी की ये यादगार है, लेकिन भक्त लोग जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो इस बात को नहीं जानते कि असली बिरला व्यापारी सतयुग का आदि नारायण है, या उसको भी जन्म देने वाला कोई उसी जन्म में नर, उसी जन्म में नर बन करके पढ़ाई पढ़ने वाला और उसी जन्म में राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके विश्व की बादशाही लेने वाला नारायण, वो भक्त लोग जानते ही नहीं जिन्होंने शास्त्र रखे। कितनी वंडरफुल बात है। तो सिद्धि यही होता है कि जो पुजारी से पूजी बना सकता है वो और कोई भी नहीं बना सकता, क्योंकि वो ही एवर पूज्य है। प्रैक्टिकल की बात है। एवर पूज्य कैसे है? नहीं, प्रवृत्ति में 24 घंटे रहे, माने प्रकष्ट, वृत्ति माने वृत्ति बनाकर स्त्री पुरुष दोनों जो मंदिर में यादगार रखी हुई, तो भी अमोघ वीर्य बन के रहे गा संपन्न स्थिति प्राप्त करते। क्या जैसे दुनियावी लोग भूमूत की संतान पैदा करते हैं वैसी संतान वो पैदा करने वाला नहीं है, वो बेहद का बाप है, बेहद की सृष्टि रचता है, बेहद की संतान पैदा करता है। और ऐसी संतान करने वाला, पैदा करने वाला बाप वो ही एवर पूज्य गाया गया है। एवर पूज्य का मतलब माने उससे ज्यादा पूज्य पने का कोई कर्मेंद्रियों से काम कर ही नहीं, कर्मेंद्रियों नहीं, कर्मेंद्रिय लिंग इंद्रिय से कोई काम कर ही नहीं सकता, जो यज्ञ के आदि में भी काम करता था ओम मंडली में धोबी गाता और ब्रह्मा दादा लेखराज उसका अपोजिशन करते थे, क्योंकि बच्चा बुद्धि था, गहराई को समझ नहीं सकता था। सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण बच्चा, बच्चा ही बुद्धि होगा, बाप थोड़ी होगा। पत्ता पत्ता होता है, बाप बीज बीज होता है, ऐसे होता है या नहीं है? इसीलिए कहते हैं मुसलमान आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, जो वो है एवर पूज्य लेकिन इम्प्रैक्टिकल। वो स्वयं बोलता है ब्रह्मा मुख से, मैं त्रिकालदर्शी तो हूं लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं, तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी बनते, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं। जिस ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में अंडे अंडे मिसल तुम बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी हो, मैं वहां का मालिक हूं, लेकिन तुम बच्चे तीनों लोक के मालिक बनते हो। क्या तीनों लोक? दुखधाम, दुखधाम से ऊपर सुखधाम और सुखधाम से ऊपर शांतिधाम, ये तीनों लोक के मालिक तुम बच्चे बनते हो, मैं नहीं बनता। तो जो बनता नहीं है, लोकी ना तो बनता ही नहीं है, वो दूसरों को बनाएगा, अपने बच्चों को बनाएगा है? बनाता है, वो नहीं बनाता, वो जिसमें प्रवेश करता है वो अपने बाप की परंपरा फॉलो करता है, वो बाप राजा ही नहीं लेता, क्या वो राजाई का ताज धारण नहीं करता, वो तो निराकार, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं भी राजा ही का ताज नहीं धारण करता। शंकर को ताज दिखाते हैं, दिखाते हैं नहीं दिखाते, वो तो फकीर के रूप में दिखाते हैं, फकीर बेगर, जिसके पास मकान नहीं, जंगल में रहता है, पहाड़ों पर रहता है। विश्व का बादशाह कहा जाता है, क्या कैसा बादशाह? बेताज बादशाह। हाँ, उसकी सहयोगिनी शक्ति को ताज होता है या नहीं होता है? हैं? उसको ताज होता है, पार्वती को ताज होता है, लेकिन शंकर को ताज नहीं दिखाता। कौन सा ताज? और वो ताज कहाँ तैयार होता है? पवित्रता का ताज। वो पवित्रता का ताज स्वयं नहीं धारण करता, माताओं को देता है। क्या ताज? स्वर्ग का गेट ये कन्याएं माताएं खोलेंगी। पुरुष दुर्योधन दुशासन है, ये स्वर्ग का दरवाजा खोल ही नहीं सकते। इसलिए ज्ञान कलश लक्ष्मी माता को दिया जाता है। शास्त्रों में प्रसिद्ध है क्या? सागर मंथन। क्या प्रसिद्ध है? सागर मंथन। देवताओं ने भी किया, असुरों ने भी किया, और ज्ञान कलश किसको दिया गया? माता को दिया। माताएं ज्ञान कलश बांटने के योग्य हैं। पुरुष तो दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ ही नहीं पाते। नाक रगड़ के देख लो, कोई छाती ठोक के कहे हमने हमने कामेंद्र को जीत लिया, कहेगा कोई? कहेगा? अरे कहेगा कोई? ब्राह्मण कहेगा? कोई नहीं कह सकता, अभी कोई नहीं कह सकता। लेकिन जल्दी ही वो प्रत्यक्षता का समय आने वाला है, जिसके लिए बोला है ब्रह्म वाक्य कि जो देखे इन आंखों से और जो कानों से दो शब्द भी सुनेगा, उसके मुख से अनायास ही निकलेगा मेरा बेहद का बाप इस सृष्टि पर आ गया। फिर कोई पूछेगा कि आने वाले भविष्य की बात है, निकट भविष्य की बात है, चलो मान लिया। फिर ये भी बोला है कि पहले राजधानी स्थापन होगी, भले छोटा रूप हो राजधानी का, उसके बाद विनाश शुरू होगा। क्या ऐसे नहीं हो सकता? क्या क्या नहीं हो सकता कि प्लाट में बहुमंजिला इमारत खड़ी होनी है 84 मंजिल की, और उस प्लाट में एक कमरा तैयार न किया जाए माल मर्तबा रखने के लिए? बनाते हैं कि नहीं एक कमरा? फिर उस कमरे के आधार पर जब पूरा फाउंडेशन पड़ता है, फाउंडेशन तैयार हो जाता है, पहली मंजिल तैयार होती है, फिर वो जो कमरा बनाया वो बिगाड़ देते। जैसे लेंटर डालते हैं तो पहले कच्ची छत बनाते हैं, उसके ऊपर लेंटर डालते हैं। जो कच्ची छत है वो सदाकाल के लिए नहीं है, और पक्की छत सदाकाल के लिए हो जाती। तो ऐसे ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन होती है,
और स्थापन करने वाला है बाप मनुष्य सृष्टि का अपने बाप के इशारे पर। क्या उसको सिखाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल बाप, जो राजयोग का युक्ति सिखाने वाला। वो योगी नहीं है कौन? सुप्रीम सोल बाप योगी नहीं है। कोई कहे योगी है? अरे किससे योग लगाता है? उससे ऊंच तो कोई है ही नहीं। तो वो योगी नहीं है, वो ज्ञान का अकूट भंडारी है। वो बोलता है, शास्त्रों में भी लिखा है क्या? पूर्णमिदं पूर्णमदाय पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण में से कोई पूरा ही निकाल ले, अकूट भंडार निकाल ले, तो भी पूरा बचता। तो वो पूर्ण ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर जब चैतन्य ज्ञान सूर्य आता है तो अपना टाइटल जिसको देता है सूर्यवंश का, वो रघुकुल भूषण, वो आत्मा ज्ञान सागर कही जाती है। क्या कही जाती? ज्ञान सागर कही जाती है। जिस ज्ञान सागर की गोद में धरणी माता खेलती है, क्योंकि धरणी एक हिस्सा है। कितने हिस्सा है? एक हिस्सा, और तीन हिस्सा सागर। तो कौन किसकी गोद में खेलता है? धरणी माता सागर की गोद में खेलती है, और सागर की और एक पहचान कि वो धरणी से अटैच होकर के रहता है, या जो सूर्य का टाइटल देने वाला है उसके समान अटैच होके रहता है या डिटैच होके रहता है? वो तो डिटैच रहे, लेकिन सागर धरणी से अटैच होके रहे, सदा सर्वदा अटैच होके रहे। जो बोला ब्रह्म वाक्य, तुम बच्चे हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ नहीं सकते। क्या तुम नहीं छोड़ सकते? तुम पक्के हो। मेरी बात अलग है। किसकी? उसकी। वो प्रवृत्ति मार्ग में है ही नहीं। होता है, प्रैक्टिकल में भी होता है, तो अल्पकाल के लिए होता है, संगम युग में ही थोड़े समय के लिए होता है, या चारों युगों पांचों युगों के लिए होता है? सिर्फ संगम युग। लेकिन तुम बच्चे सदा काल के लिए प्रवृत्ति मार्ग, इसलिए गीता में जो ज्ञान दिया है प्रवृत्ति मार्ग वाले अर्जुन को दिया है, या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को दिया है? है? हाँ, प्रवृत्ति मार्ग के पांडवों को दिया। जो पांडव संसार में गुप्त होकर के घूमते थे, क्या गुप्त होकर के घूमते थे, दुनिया नहीं पहचानती थी, इस्लाम धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले, क्रिश्चियन धर्म वाले, दुनिया में जो क्रिश्चियन धर्म के 200-250 करोड़ मनुष्य हैं, दुनिया की सारी आबादी का लगभग आधा क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं। दुनिया में और धर्म वाले इतनी जनरेशन है, कोई उन गुप्त पांडवों को पहचानते ही नहीं, इतना गुप्त पार्ट बजा। उन्हीं गुप्त पांडवों में से वो 16,000 ऐसे पांडव और शक्तियां निकलती हैं जो गोप और गोपियां गाई जाती है, जो
राज परिवार के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर। कौन सा राज परिवार? जो राजयोग सीखने वाले हैं भगवान से, क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई राजयोग सिखा ही नहीं सकता, तो वो स्वयं योगी नहीं है। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको योगी बनाता है, स्वयं ज्ञानियों का भंडारी है, ज्ञान का भंडारी, और बच्चों को योग सिखाता है। और योग के आधार पर तुम बच्चे विश्व की बात सही लेते हो। जो जितना योगी बनेगा उतना बड़ा जन्म जन्मांतर राजा बनेगा। ये राजाई की शिफ्ट, ये राजाई की पढ़ाई दुनिया में आज तक किसी धर्म पिता पिंडा पंडित विद्वान आज नहीं सिखाई। ये कंट्रोलिंग पावर कौन सिखाता है? राजयोग के द्वारा, राजयोग की युक्ति सिखाकर वो सिखाता है। जो योगियों का ईश्वर है, योग ईश्वर कहा जाता है। राज विद्या राज गुह्यम। तो ये 16,000 आत्माएं हैं जो कोई न कोई जन्म में कम से कम एक बार उस परिवार के सदस्य प्रैक्टिकल में जरूर बनते हैं, राज परिवार के बाकी बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 84 जन्म भी राजा बने। तो किस आधार पर बनते हैं? है? कौन बनाता है? जो एवर पूज्य है। कैसे? हवा में एवर पूज्य, कि प्रैक्टिकल प्रवृत्ति में इंद्रियों के साथ रह करके एवर पूज्य। प्रूफ कैसे मिलेगा? प्रूफ प्रैक्टिकल कर्म का मिलेगा या बिना कर्म किए मिल जाएगा? प्रैक्टिकल प्रूफ कर्म का बनता है। तो जो जैसा है वैसा बनाएगा, ये भी बात है क्या? जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। कैसा है? जो बापों का बाप सुप्रीम सोल है वो योगी है, वो योगी है या ज्ञानी है? वो ज्ञानी है। निराकार आत्माओं का बाप है तो निराकार वर्षा देने वाला है, निराकार वर्षा है ज्ञान का। योगी तो प्रैक्टिकल में होता है, व्यक्तित्व होता है, उसका अपना शरीर होता है और योग के आधार पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करता है। वो योगी एवर पूज्य कहा जाता है। क्या? सारी दुनिया के सामने एक टाइम जरूर ऐसा आता है रंगमंच पर कि 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र उसको पूजते। कैसे? तन मन धन सब कुछ अर्पण करने की स्टेज पर आ जाते। क्या? कैसे पूजा की जाती है? अपनी भारतीय परंपरा में तो प्रसिद्ध है, माता पिता अपनी कन्या का दान करते हैं, कन्या माता पिता का तन की ताकत है या नहीं है? तो तन भी अर्पण करते हैं, धन भी अर्पण करते हैं, करते हैं या नहीं? तन भी अर्पण करते हैं, धन भी अर्पण करते हैं, और कन्या की पवित्रता की पावर भी सारी अर्पण करते हैं। नहीं करते। रोटी बेटी से दामाद की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, पाव पूजते हैं या नहीं पूजते हैं, है? पूजते हैं, उसको कहते हैं पूजा। ये भगवान भी सर्व संबंधी बनकर इस सृष्टि पर आता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम्। जो भी दुनिया में सब कुछ है संबंध, वो सब कुछ मेरे तुम हो। कहाँ का गायन है? इस संगम युग का गायन है। तो देवताएं भी उनको पूजते हैं, परंतु ये चित्र रख दिया है शिवलिंग जो सबका पूज्य है। इसकी पहचान दुनिया में आज तक किसी ने नहीं दी। क्या शिवलिंग की जाकर पूजा कर लेंगे, माथा रगड़ लेंगे, मक्खन चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे, फूल पत्र चढ़ाएंगे, लेकिन जानते नहीं है ये क्या है, कौन है। गाते हैं तू माता भी है तू पिता भी, अरे के ही दोनों कैसे हैं, वो नहीं सोचते है, बस है कैसे है ये कोई मतलब नहीं। तो ऐसे चित्र से वो समझ तो सकेंगे ही। क्या कहा, क्या ये जो चित्र है सार्वभौम, सारी भूमि पर खुदाइयों में ये चित्र मिला है और सबसे जाति तादाद में मिला है। कौन सा चित्र, कौन सा मूर्ति, शिवलिंग मूर्ति। ऐसे चित्र से वो समझ सकेंगे, वो माने कौन, दूसरे धर्म वाले समझ सकेंगे। क्या दूसरे धर्म वाले उस निराकारी स्टेज वाले को समझाएंगे तो समझेंगे, बाकी कृष्ण को भगवान बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। यही भूल कर दी गीता में विद्वान पंडित आचार्य ने, क्या भूल कर दी, निराकार को निकाल दिया और साकार कृष्ण का नाम रख दिया, थोक दिया। वो विधर्मी भी समझ सकेंगे विदेशी, क्योंकि देवताएं भी उनको पूजते हैं, तो फिर मनुष्य की क्या बात करें। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको तो मन बुद्धि है, देवताएं तो मन चलाते भी नहीं है, तो भी वो देवात्माएं द्वापर युग से उसकी पूजा करते हैं। तो बोला तो जब देवताएं उनको पूजते हैं तो मनुष्य फिर देवताओं को पूजेंगे। किसी ने कुछ कहा, हाँ तो जबकि पुजारी पूज्य को नमन करते हैं, तो अगर उनसे सिर्फ पूछा जाए कि पूज्य अच्छा है या पुजारी अच्छा है, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भाई पूजा करने वाला अच्छा है। जो रोटी बेटी से पूजा करे वो अच्छा है, ऐसे कहेंगे हा? पूजा लेने वाला अच्छा या पूजा देने वाला पुजारी अच्छा, लेने वाला अच्छा, ऊंच कुल का। तो भारतीय परंपरा में कन्या ऊंच कुल में देते हैं या नीच कुल में देते हैं, है? अच्छे कुल में देंगे, नीच कुल में कन्या नहीं अर्पण करते। अरे मत्था टेकते हो ना, भक्त लोग जो पूज्य है उसके सामने नाक रगड़ के माथा रगड़ के पूजा करते हैं ना, पूज्य को माथा टेकते हो ना, तो पूज्य बनना अच्छा हुआ ना। क्या भगवान बाप इस सृष्टि पर आए हैं? हाँ जी बताओ, यही भगवान बाप जिसकी यादगार मंदिर सार्वभौम है दुनिया में। जरूर ऐसा कोई समय हुआ है इस दुनिया में 5000 वर्ष पहले, जो सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र ने इस स्वरूप को पहचान करके इसको पूज्य माना है और सारी पृथ्वी पर वो शिवलिंग स्थापन किए हैं यादगार के रूप में। नहीं तो दुनिया के देशों की खुदाई में ये शिवलिंग वहां क्यों मिल रहे हैं? क्या मिल रहे हैं? कारण चाहिए ना, यही कारण है कि 5000 वर्ष पहले भी ये ग्रेनाइट पत्थर के शिवलिंग बनाए गए थे और देश विदेश में विदेशियों ने इनकी पूजा की थी। तो पूज्य बनना तो अच्छा है ना, वो तुमको फिर से पूज्य देवता बनाने आया हुआ क्या नरते नारायण जैसा बनाने आया हुआ है। तो किसी ने कहा, वो विदेशी लोग तो कहते हैं हम नहीं बनेंगे देवता, अरे हम नहीं बनेंगे। इसका मतलब है तुमको समझाना ही नहीं आता है। कितने वर्ष हो गए ब्राह्मणों को कहते कहते ब्रह्मवाद के मुरलियों ने, बच्चे बाप का परिचय दो त्रिमूर्ति में। दुनिया भर की टिक टिक करते रहते हैं मुरली के वाक्य हैं, अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब त्रिमूर्ति में चित्र में बाप का चित्र कौन है? परिचय देने वाले ब्राह्मण जानते हैं असली? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो बाप कहते हैं परिचय देते ही नहीं। जब देता है तब तो देना चाहिए, है? देना चाहिए ना। जो बिना कहे इशारे से करे तो देवता, और जो कहने से भी न करे वो गधा जानवर, और जो कहने से करे इशारे से नहीं समझेगा लेकिन कहो बार बार तो करेगा वो मनुष्य। तीन प्रकार बता दिए मनुष्य, एक देवता बनने वाले इशारे से ही समझ जाएंगे, एक वो जो बार बार उनको कहो समझाओ तो कहेंगे समझाएंगे, और तीसरे वो कितना भी कहते रहो वो मानने वाले नहीं। जब सारी दुनिया मानेगी, उनके धर्म पिताएं मानेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे संसार में, तब वो ओम शांति।